ವಂದೇಹಂ ಶ್ರೀಗುರೋ ಶ್ರೀಯುತಪದಕಮಲಂ ಶ್ರೀಗುರೋನ್ ವೈಷ್ಣವಾಂಶ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗರಜಾತಂ ಸಗುಣರಂಗನಾಥಾನ್ವಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾದ್ವೈತಂ ಸಾವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರೀರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪಾದಾಂ ಸಗುಣಲಲಿತಾ ಶೀರ್ಷಾಕಂತಂ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭೋ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸುದಿ ಗೌರ ಭಕ್ತವೃಂದ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರೇ ಹರಿ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಹರೇ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಸೋ ಸುಬಹ ಹಮ್ ಲೋಕ ಚರ್ಚಾ ಕರ್ ರಹೇ ಥೆ ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕೈಸೆ ಸಮನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಪುಟ್ ಪ್ರೋಪಲ್ ಲಕ್ಷ ಹಿಯರ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ದಟ್ ದೇ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರೋಪಲ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಬಟ್ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಶಿಲ ಪ್ರೋಪಾಸ್ ಸೊ ಬೆಟರ್ ವಿ ಡೂ ದಟ್. तो सुबह हम लोग चर्चा कर रहे थे कि अर्जुन तो शो कर रहे थे भौतिक स्नेह के कारण और दया के कारण अज्ञानवश, तो भगवान उसको उनको खंडन करते हैं कि और भगवान आश्चर्य व्यक्त करते हैं कि ऐसे व्यक्ति जो आर्य परिवार में आए हुए जो क्षत्रिय है ऐसे आत्मज्ञान में ज्ञान का ज्ञान को व्यक्त कर रहे हैं, इसके लिए भगवान बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने कहा कि वो स्वर्ग को नहीं लेकर जाएगा और कीर्ति नहीं लेगा, यश नहीं लेकर आएगा. और हम लोग चर्चा भी कर रहे थे भगवान उवाच, पहली बार श्री भगवान उवाच भगवद्गीता में. तो अगला श्लोक लेंगे. क्लैब्यमास्मदमर्पार्थमैतद्युपपद्यते शुद्रं गदे दौर्बल्यं यत्कोतिष्ठाकरं तपा. हे प्रतापत्र, इस हीन नपुंसकता को प्राप्त मत हो, यह तुम्हें शोभा नहीं देती. यह शत्रुओं के दमन करता हृदय की क्षुद्र दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ. तो यहाँ पर तो दो शब्द है जो भगवान जिनके द्वारा, या दो अर्जुन के नाम हैं जिनको भगवान संबोधित कर रहे हैं, एक पार्थ दूसरा परंतपा. तो प्रभुपाद बोलते हैं पार्थ शब्द का अर्थ है प्रथा के पुत्र. प्रथा मतलब कृष्ण के पिता, वसुदेव की बहन. तो इसके कारण भगवान के साथ अर्जुन का संबंध है. तो ऐसे कहकर क्या बता रहे थे भगवान कि मेरे साथ संबंध होते हुए भी आप ऐसे बर्ताव नहीं कर सकते हैं. पिछले श्लोक में हम लोगों ने कहा वो आर्य परिवार में जन्म लेकर भी आप ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, उसके लिए भगवान आश्चर्यचकित हो गए. और यहाँ पर उनका आश्चर्य इसलिए व्यक्त हो रहा है कि उनके संबंधी होने के नाव बावजूद भी ऐसे सो अर्जुन बर्ताव कर रहे हैं तो, और परम तपक हे शत्रुओं को दमन करने वाले, तो क्षत्रिय होकर युद्ध न करने के लिए मना करता है तो वो क्या हो जाता है, वो नाम का ही क्षत्रिय है, वो दूसरा अर्थ है। तो उनको क्या बोलते हैं, नाम का क्षत्रिय, उनको क्षत्र बंधु कहते हैं। क्षत्रिय परिवार में जन्म लिए लेकिन वास्तविक क्षत्रिय नहीं बने हो, वो अपने ये योग्य क्षत्रिय नहीं बने, इसलिए क्षत्रिय क्षात्र बंधु कहते हैं। और वैसे ही ब्राह्मण बंधु होते हैं, जो ब्राह्मण परिवार में जन्म लेते हैं लेकिन ब्राह्मण नहीं बनते हैं वो लोग, क्योंकि उनके अंदर वो योग्यता का विकास नहीं होता है, तो उसके कारण उनको ब्रह्म बंधु कहते हैं। तो ऐसे क्षत्र बंधु, क्षत्र बंधु और ब्रह्म बंधु होते हैं। तो ये दोनों शब्द का अर्थ है। और तो इसलिए भगवान बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए, तो भगवान इसलिए उनको क्योंकि उनका रक्त संबंध है, इसके कारण उनका अभी क्या है, रथ हांक रहे हैं, तो उनके लिए भी क्या हो जाएगा, वो बहुत ही अपयश का कारण बन जाएगा, अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे था। तो पढ़िए उसको, त्यक्तो तिष्ठ परम तप नहीं तत्व्युपपद्यम, इस ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो। पहले वो क्या कहते हैं, ही नपुंसकता क्लैब्यम, क्लैब्यम नपुंसकता, इसका अर्थ होता है जो शारीरिक भावना में रहते हैं वो नपुंसक है। जनरली कैसे होता है नपुंसक, मतलब भौतिक समाज में उसका अर्थ दूसरा होता है, लेकिन वास्तव में यहाँ पर क्या बोल रहे कि देहात्म बुद्धि में जो रहते हैं उनको, या अपने क्षत्रिय धर्म को नहीं पालन करते उनको नपुंसक कहते हैं। और हृदय की क्षुद्र दौर्बल्य, ये भी देहात्म बुद्धि को इंगित करता है, हृदय की दुर्बलता है देहात्म बुद्धि। तो पढ़िए,
अर्जुन को प्रताप के रूप में संबोधित किया गया है, तथा कृष्ण के पिता वसुदेव की बहन थी, अतः कृष्ण के साथ अर्जुन का रक्त संबंध था। यदि क्षत्रिय पुत्र लड़ने से मना करता है तो वह राम का क्षत्रिय है, यदि ब्राह्मण पुत्र अपवित्र कार्य करता है तो वह नाम का ब्राह्मण है। ऐसे क्षत्रिय तथा ब्राह्मण अपने पिता के अयोग्य पुत्र होते हैं, तथा कृष्ण ये नहीं चाहते थे कि अर्जुन अयोग्य क्षत्रिय पुत्र कहलाए। अर्जुन कृष्ण का घनिष्ठ मित्र था और कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसके रथ का संचालन कर रहे थे, किंतु इन सब गुणों के होते हुए भी यदि अर्जुन युद्धभूमि को छोड़ता है तो वह अत्यंत निंदनीय कार्य करेगा। अतः कृष्ण ने कहा कि ऐसी प्रवृत्ति अर्जुन के व्यक्तित्व को शोभा नहीं देती। अर्जुन यह तर्क कर सकता था कि वह परम पूज्य भीष्म तथा सज्जनों के प्रति उदार दृष्टिकोण के कारण युद्धभूमि छोड़ रहा है, किंतु कृष्ण ऐसी उदारता को केवल हृदय दौर्बल्य मानते हैं। ऐसी झूठी उदारता का अनुमोदन एक भी शास्त्र नहीं करता। अतः अर्जुन जैसे व्यक्ति को कृष्ण के प्रत्यक्ष निर्देशन में ऐसी उदारता पर या तथाकथित अहिंसा का परित्याग कर देना चाहिए।
अगला श्लोक, अर्जुन उवाच कथम भीष्मे भोनम च मधुसूदन इशुभि प्रतियोत्स्यामि पूजार्वारिसूदन। अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पर पूजनीय व्यक्तियों पर उलट कर बाण चलाऊं। खतम भीष्मम अहम संके द्रोणम च मधुसूदना। तो कैसे खतम भीष्मम अहम संके द्रोणम च मधुसूदना इशुभि प्रतियोत्सामि पूजार्वारिसूदना। अर्जुन ने कहा हे शत्रुहंता हे मधुसूदन, ये भीष्म और द्रोण क्या है? मेरे पूजनीय है, पूजा के योग्य है। आप तीर चलाने के लिए वो बोल रहे, इससे अच्छा मैं कुछ फूल अर्पण करूं उनको। पूजार वारिसूदना, पूजा के योग्य है। तो और खत्म पूजार वारिसूदना, और यहाँ पर वो जो शब्द है ना मधुसूदना और हरिसूदना, हे शत्रुहंता हे मधुसूदना। हरिसूदन मतलब शत्रु के हंता है, और मधुसूदन आपने तो अपने पूर्वजों को तो नहीं बता नहीं मारा आपने, अपने गुरु और पूर्वजों को तो नहीं मारा आपने। मधु नामक एक राजा थे ना, उनके उनके यदुवंश में उनके पूर्वज थे वो। मधुसूदन मतलब उनको नहीं मारा उन्होंने, मधुसूदन मतलब मधु नामक असुर को मारा, इसलिए हरिसूदन शब्द भी वहां पर उपयोग करे। शत्रु का हंसा, जो शत्रु मधु था उसको आपने हत्या किया। आपके जो पूर्वज मधु, फिर क्यों मुझे क्यों मेरे पूर्वज भीष्म और मेरे गुरु द्रोण को मारने के लिए बोल रहे? आपने तो किया नहीं, आपने सांदीपनी मणि को तो नहीं किया, नहीं हत्या किया। तो ऐसे वो कहते हैं, और प्रभुपाद तात्पर्य में भी देखे, कृष्ण भी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य संदीपनी मुनि पर तो हाथ चला नहीं सकते। तो ये पूजा के योग्य है लोगों, उनको कैसे हम लोग मार सकते हैं? तो ये शिष्टाचार के विरुद्ध, प्रभुपाद तात्पर्य में बोल रहे सामान्य शिष्टाचार के विरुद्ध है ये। एटिकेट एक्चुअली मैं भूल गया, वो प्रभुपाद जी वो सामान्य शिष्टाचार के अनुसार वो कोई शास्त्र से वो बोलते हैं उसको, तो बाद में कल सुबह बता दूंगा उसको। तो ये शास्त्र के विरुद्ध है, एटिकेट के विरुद्ध है। तो जब वयोवृद्ध व्यक्ति गुरुजन हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं तो उनको फिर से हम आक्रमण नहीं करना चाहिए। तो ऐसे वो कह रहे, और खत्म शब्द भी महत्वपूर्ण है। खत्म कैसे मार सकता हूँ, ऐसे बोलते हैं, कैसे मार सकता हूँ। कभी कभी है ना ब्रह्मचारी, कैसे मैं घर को छोड़ सकता हूँ, ऐसे बोलेंगे। या सन्यासी, संन्यास लेना चाहिए मृत्यु के अंत समय, समय से पहले या अंतिम जीवन के अंतिम समय से पहले सब लोग संन्यास लेना चाहिए। रूपा जी कहते हैं सभी ब्राह्मणों को संन्यास का, संन्यास जरूरी है बोलते, मस्ट, इट इज अ मस्ट फॉर एवरी ब्राह्मण। तो आप पहले ही सोच लो ब्राह्मण दीक्षा लेने के बारे में। हाँ तो सो ये मस्ट बोलते हैं संन्यास लेना, तो अंतिम समय पर। तो तब हम लोग ऐसे सोच सकते हैं कैसे मैं त्यागूं, कैसे मैं छोड़ के चले जाऊं। जैसे श्रील प्रभुपाद बार बार गांधी को पत्र लिखा, छोड़ दो, क्या है राजनीति की, छोड़ दो, भगवद गीता का प्रचार करो, आपके देश के लिए भी भलाई होगा और पूरा दुनिया के लिए भी भलाई होगा। वो छोड़ा नहीं जब तक उसको मारा गया। तो प्रभुपाद कहते हैं हम लोग स्व इच्छा से छोड़े या बाध्य होकर छोड़े, छोड़ना तो पड़ेगा ही, तो मृत्यु आएगा और हमें बाध्य करेगा छोड़ने के लिए, घर परिवार छोड़ने के लिए। लेकिन हम लोग स्व इच्छा से छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए ये हमारा हृदय रोग है, हृदय के रोग है, जिसको पिछले श्लोक में हृदय दौर्बल्यम और क्लैव्यम ऐसे कहते हैं। खत्म भीष्म अहम संके, तो पढ़िए उसको तात्पर्य को।
भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सम्मानीय व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं, यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलट कर प्रकरण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि दुल्हनों से बाग युद्ध भी न किया जाए। जहाँ तक यदि कभी वे रुष व्यवहार करें तो भी उनके साथ रुष व्यवहार न किया जाए, तो फिर भला आदमी उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था। क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उद्देश्य में अपने आचार्य शादी की उंगली पर हाथ चला सकते थे? अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ कर प्रस्तुत किया।
गुरु न हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपि लोके हत्वा तकामांस्तु गुरो निहैव गुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रतिज्ञान्। तो ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा इस संसार में भीख मांगकर खाना अच्छा है, भले ही वे संसारिक लाभ के इच्छुक हो, किंतु है तो गुरुजन ही। यदि उनका वध होता है तो हमारे द्वारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगी। तो ऐसे वो कहते हैं, गुरु नहत्वा ही महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षम बीहलोके हत्वार्थ कामांस गुरुणि है वह गुंजी या भोगान रुधिर प्रदिग्धान। तो महानुभावान्, तो जो भीष्म और द्रोण क्या कौन है, ये महानुभावान् है, तो महापुरुष है। तो महापुरुष किसके लिए है? द्रोण तो गुरु है, उनको धनुर्विद्या, उनको वेदों का ज्ञान है, तो वो है। और भीष्मदेव भी महापुरुष है क्योंकि महाजन है। और दूसरा है वो आजीवन ब्रह्मचारी रहे, बृहद्व्रत ब्रह्मचारी रहे, इसके लिए भी महानुभाव कहा गया उसको, उनको। महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं वैक्षमपि लोके, तो हत्वार्थ कामान् सुगुरुणि है वा, ऐसे लोगों को मारने से क्या हो जाएगा, या इससे अच्छा है कि हम लोगों को भीख मांगकर जीना चाहिए, ऐसे वो अर्जुन कह रहे। तो वास्तव में ये दोनों योग्य नहीं थे गुरुजन बनने के लिए। ऑफ कोर्स भीष्मदेव है, लेकिन स्वयं भीष्मदेव कहते हैं कि अर्थस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्त न खश्यति खश्यचित इति सत्यम महाराज बद्धोस्मि अर्थेन कौरवे। तो अर्थ क्या होना चाहिए? पुरुष का, व्यक्ति का दास होना चाहिए, व्यक्ति कभी भी अर्थ का दास नहीं होना चाहिए। बद्धोस्मि अर्थेन इति सत्यम महाराजा, ये सत्य है महाराज, कौन महाराज मुझे भी पता नहीं, लेकिन किसी महाराज को बोल रहे थे भीष्मदेव। बद्धोस्मि अर्थेन कौरवे, जो जानना चाहते कौन महाराज है वो महाभारत पढ़िए और मुझे भी बताइए। सो बद्धोस्मि अर्थेन कौरवे, मैं कौरवों का जो अर्थ है उससे बंध गया हूँ। इसका अर्थ पता समझ में आएगा, प्रभुपाद यहाँ पर तात्पर्य में लिखते हैं ना, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म तथा द्रोण उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था। वो स्वयं बोल रहे, एक व्यक्ति आर्थिक सहायता का दास नहीं बनना चाहिए, वास्तव में आर्थिक सहायता उनका दास बनना चाहिए, लेकिन मैं क्या बन गया, कौरवों का आर्थिक सहायता से बद हो गया हूँ। ऐसे महाभारत में 6:41-36 में बताया हूँ। तो और इसलिए क्या है, वो गुरु ही होने के लिए योग्य नहीं है, क्योंकि उनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो भी पता नहीं। ये भी यहाँ पर श्रील प्रभुपाद पहले बोलते हैं ना, शास्त्रों के अनुसार ऐसे गुरु जो नींद कर्म में रत हो, जो वेश वे विवेक शून्य हो, त्याज्य है, ऐसे कह रहे हैं। ये श्लोक भी भीष्म देव ने ही कहा था, आपको पता है कहाँ पर? महाभारत में, जब वो अम्बा के विषय में ना, तो अम्बा को क्या करते हैं, विचित्र वीर्य के लिए क्या करते हैं, वो जीत करके लेकर आते हैं, लेकिन क्योंकि उनका पहले ही कुछ किसी के साथ लव अफेयर चल रहा था, प्रेम संबंध चल रहा था, उसके कारण विचित्र वीर्य से विवाह नहीं करते हैं, फिर वो उनको छोड़ देते हैं भीष्मदेव, फिर वापस उसके पास जाएंगे तो वो भी स्वीकार नहीं करते, फिर भीष्म को आके पूछती है वो, आप ही विवाह करो मुझे अभी, फिर वो भी विवाह नहीं करते, क्योंकि उन्होंने तो वचन लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूँगा करके। तो फिर वो जाके परशुराम का आश्रय ग्रहण करते, परशुराम जाके आके भीष्म के साथ युद्ध करते। वास्तव में परशुराम भीष्मदेव का गुरु है, तो उनके बीच में घोषण युद्ध होता है, और तब वो वहाँ पर वो बोलते हैं कुछ द्रोण, तो मैं आपका गुरु हूँ, ऐसे नहीं, वो कौन परशुराम, मैं आपका गुरु हूँ बोलते, लेकिन भीष्मदेव तुम्हारा बुद्धि भ्रष्ट हो गया, वैसे गुरु को स्वीकार उनको त्यज देना है ना, क्या बोलते हैं, गुरुरप्यवलिप्तस्य कार्याकार्यम् अजानतः उत्पत प्रतिपन्नस्य परित्यागो विधीयते। गुरुरप्यवलिप्तस्य, अवलिप्तस्य मतलब ऐसे गुरु जो निंद्य कर्म में विशेष करके चार नियम का पालन नहीं कर रहे हैं, कार्याकार्यम् अजानतः, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उसका ज्ञानकारी नहीं, विवेक नहीं है, तो ऐसे गुरु को परित्याग कर सकते हैं, ऐसे भीष्मदेव कहते हैं। तो महाभारत 5:178-24 तो यही पहला लाइन जो तात्पर्य के पहला लाइन है ना, वही श्लोक का वो सार यह है, अर्थ है। तो मतलब दूसरा लाइन, दूसरा वाक्य और पहला वाक्य क्या है, वो दो श्लोक है। फिर हालांकि ये द्रोण और भीष्म, उनको त्याज गुरुजन मानने का जरूरत नहीं था, क्योंकि वो लोग ऐसे दुष्ट दुर्योधन का सहायता किया उन्होंने, तो फिर भी अर्जुन क्या है, वो इतने दयालु है, वो उनको भी क्या करना चाहते हैं, उनको भी हत्या नहीं करना चाहते, उससे उसके बजाय भीख मांग के रहना चाहते। तो जनरली क्षत्रिय को भीख मांग के रहना वो आसान चीज नहीं है, तो वो लोग भीख नहीं, कभी नहीं मांग सकते वो। लेकिन अर्जुन का यहाँ पर इंद्रियों के ऊपर कितना काबू है और कितना अनासक्त है उसका हम लोग समझ सकते हैं। मन और इंद्रियों के ऊपर कितना काबू है और कितना अनासक्ति है उसको हम लोग समझ सकते हैं। तो और वो कहते हैं कि जो भोग हम लोग करेंगे वो इनके गुरु के रक्त से सनी होती है। तो एक बार पढ़ लीजिए तात्पर्य।
शास्त्रों के अनुसार ऐसा गुरु जो नित्य कर्म निरत हो और जो विवेक शून्य हो, त्याज्य है, दुर्योधन से आर्थिक सहायता लेने के कारण भीष्म को उसका पक्ष लेने के लिए बाध्य थे, यद्यपि केवल आर्थिक लाभ से ऐसा करना उनके लिए उचित न था, ऐसी दशा में वे आचार्यों का सम्मान खो बैठे थे, किंतु अर्जुन सोचता है कि इतने पर भी वे उसके गुरुजन हैं, अतः उनका वध करके भौतिक लाभों का भोग करने का होगा।
श्लोक छठा। न चैतद्विद्मः कतरन्नो गरीयो यद्वाजयेम यदि मानो जयेयो यानेव हत्वा न जिजीविषामः एव स्थिता प्रामुखे धार्तराष्ट्रः। हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना या उनके द्वारा जीते जाना। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्र का वध कर देते हैं तो हमें जीवित रहने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी वे युद्ध भूमि में हमारे समक्ष खड़े हैं। अर्जुन की समक्ष में यह नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, तो युद्ध करे या और अनावश्यक रक्तपात का कारण बने। यद्यपि क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना उनका उसका धर्म है, तो क्या यहाँ पर कंफ्यूजन, तो द्वंद्व में पड़ गए वो, क्या करना चाहिए। न चाहिए तदमो खतरन यदवा जय न यदि यानी वह हत्वा जिजी निशान, तो हम ये समझ नहीं पा रहे हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है। तो हमें इनको जीतना चाहिए या उनके द्वारा हमें जीत जाना चाहिए, या उनको हमें हत्या करना चाहिए या वो हमें हत्या करेंगे, तो इसके बीच में द्वंद्व में पड़ गए। तो और विशेष करके तो पिछले श्लोक में वो श्रेय शब्द आया था ना, तो वो क्या श्रेयस्कर है, इसमें क्या श्रेष्ठ है, ऐसे प्रभुपाद अनुवाद में कहते हैं। हम लोग देखेंगे 31वां श्लोक पहले अध्याय में वो अर्जुन कह रहे थे, न च श्रेयो न पश्यामि हत्वा स्वजन महावे न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च, तो मैं कोई श्रेय को नहीं देखता हूँ। लेकिन यहाँ पर उनको अभी द्वंद्व में है वो, कि तो वहाँ पर तो खा दिए, ऐसे ही बोल दिया उन्होंने कि मैं ये श्रेय को, जैसा कि वो श्रेय जानते हैं, लेकिन उनको श्रेय उस समय पर पता नहीं था, इसलिए यहाँ पर अभी व्यक्त कर रहे। तो इसका अर्थ है कि धीरे 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 अभी नम्रता का भावना आ रहा है उनके अंदर, अब तक बहुत अपने बुद्धि चला रहे थे, तो अभी नम्रता का भाव आ रहा है, फिर अगले श्लोक में वो शरणागत हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कन्फ्यूजन, इसका भी अर्थ क्या होता है कि अभी गुरु के पास जाने के लिए समय आ गया, ऐसे जानना चाहिए। अभी हमारे जीवन में ऐसा कोई दुविधाएं पड़ गए, हम दुविधा में पड़ गए तो तुरंत ही क्या करना चाहिए, हम लोगों को गुरु के पास जाना चाहिए। तो प्रभुपाद इसके ऊपर कहते हैं, बंगला भाषा में एक कहावत है, जाना खाना है या नहीं खाना है, तो खाना है नहीं खाना है नहीं खाना है, खाना या नहीं खाना है, ऐसे द्विविधा में है तो नहीं खाइए। कभी कभी ऐसे होता है ना, अच्छा प्रसाद है, पेट बहुत भर गया है, अभी खा लूँगा तो सुबह उठ नहीं पाऊँगा, तो बहुत सारा ऐसे दुविधा में पड़ जाते हैं, या पेट भी खराब हो सकता है, तो ऐसे दुविधा में है खाने के बारे में, तो नहीं खाना चाहिए। प्रभुपाद ये भी बोलते हैं कि खाने के संबंध में छोटा बच्चा है वो ज़्यादा खाने का गलती कर सकते हैं, जो वृद्ध व्यक्ति है वो कम खाने का गलती करना चाहिए, ऐसे प्रभुपाद बोलते हैं। तो और दूसरा चीज़ प्रभुपाद बोलते हैं उसके संबंध में, करना या नहीं करना है, खाना या नहीं करना है, अभी वो नेचर्स कॉल को अटेंड करने के लिए जाना है या नहीं जाना है, ऐसे दुविधा में है तो जाना चाहिए। तो अर्जुन भी अभी दुविधा में है, क्या करना चाहिए, हमें उनको जीतना चाहिए या वो हमें जीतना चाहिए, वो हमें उनको मारना चाहिए या वो हमें मारना चाहिए, ऐसे दुविधा में है। पढ़िए उसको।
समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें,
यहाँ पर वो आत्मज्ञान को प्राप्त करने के लिए योग्यता क्या है उसके बारे में वर्णन करे। वो पिछले श्लोक से भी संबंधित है। वहाँ पर श्रेयो भोक्तुम भैक्षमति है लोके, वो भीख मांग के रहने के लिए भी तैयार था। तो अर्जुन तो वो ये भी एक श्लोक है कुछ उपनिषदों से। सो अगला श्लोक, कार्पण्यदोषोपहत स्वभाव प्रचामि त्वां धर्म सम्मूढचेत यशयशानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शादि मां त्वां प्रपन्न। अब मैं अपनी कृपण दुर्बलता के कारण अपना कर्तव्य भूल गया हूँ और सारा धैर्य खो चुका है। ऐसी अवस्था में मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो मेरे लिए श्रेयस्कर हो उसे निश्चित रूप से बताए। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपका शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दे। तो इस श्लोक के पहला आधा भाग क्या बोलता है, गुरु को क्यों शरणागत जाना चाहिए, और दूसरा आधा भाग इस श्लोक के शिष्य का क्या गुण होना चाहिए, इनके बारे में वर्णन करता है। गुरु को स्वीकार करने का क्या जरूरत है, वो पहला आधा भाग, और दूसरा आधा भाग शिष्य का क्या गुण होना चाहिए इसके बारे में वर्णन करता है। तो पहला, कार्पण्य दोष हो, कृपण दुर्बलता करे दोष से। क्या है कृपणता, कृपण दुर्बलता का अर्थ क्या होता है? तो वही देहात्म बुद्धि है और क्या, तो अपने शरीर को और सगे संबंधियों को अपना मानना, तो उसको कृपण दुर्बलता कहते हैं। तो ये गर्ग उपनिषद नहीं, बृहदारण्यक उपनिषद में गर्ग मुनि गर्गी को वर्णन करते कृपण शब्द का क्या अर्थ है करके, यो वा एतद् अक्षरं गार्गी अविदित्वा अस्मल् लोकात्रैति स कृपणः। तो कृपण वो है वो जीवन की समस्याओं को हल किए बिना, तो वो कुत्ते बिल्लियों की तरह अपने शरीर को इस जगत को त्याग कर चला जाता है, कोई आध्यात्मिक जीवन को समझे बिना, आत्म साक्षात्कार को समझे बिना, तो उसको कृपण बोलते हैं। और वो उसको पता नहीं रहता है कि मनुष्य जीवन को कैसे जन्म मृत्यु जरा व्याधि ऐसे दुख से हमें मुक्त होने के लिए उपयोग करना चाहिए। ये मनुष्य जीवन का समस्याओं को हल करने के लिए कैसे मनुष्य जीवन को उपयोग करना चाहिए उसको ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन उसके तद विरुद्ध कैसे होता ये कृपण को और भी विस्तार से प्रभुपाद बोलते हैं। ये लोग ऐसा, उनको एक त्वचा का रोग होता है, स्किन डिसीज बोलते हैं। क्या है वो स्किन डिसीज? वो स्किन डिसीज मतलब मैं ये शरीर हूँ और ये त्वचा या शरीर से संबंधित लोग है वो मेरे हैं, ऐसे वो। और इनके बारे में और विस्तार से सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं दूसरे स्कंद के पहले दो तीन 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 श्लोकों में। श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रत अपश्यतामात्मतत्वं ग्रहेषु ग्रहमे दिना। तो सुग्रहेषु ग्रहमे दिना श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रत अपश्यतामात्मतत्वं ग्रहेषु। जो आत्म तत्व को नहीं जानते हैं ऐसे ग्रहमेदी उनको, ग्रहमेदी मतलब गृहस्थ, मतलब वो जो वर्णाश्रम में आता है उनको गृहस्थ कहते हैं। और वो लोग आश्रम मतलब जहाँ पर आध्यात्मिक संस्कृति होता है उनको आत्मज्ञान रहता है उनको गृहस्थ कहते हैं। उसके विरुद्ध में जो ग्रहमेदी होता है वो सिर्फ भौतिक जीवन में ही लिप्त रहता है, अपने शरीर परिवार पत्नी बच्चे अपने शरीर और परिवार को सज धजने में ही उसका जीवन चला जाता है। तो उसको ग्रहमेदी कहते हैं। तो जिसके घर में आदमी कोई भी आध्यात्मिक संस्कृति नहीं रहता है तो ऐसे ग्रहमेदी जो आत्म तत्व को नहीं जानता है उसके लिए हजारों विषय है सुनने के लिए और चर्चा करने के लिए। श्रोतव्यादि राजेन्द्र नृणाम संति सहस्रतः अपश्यताम आत्मतत्व ग्रहेषु ग्रहमेदिना। ये दूसरे स्कंद के दूसरा, पहले अध्याय के दूसरा श्लोक है ये। और उसके बाद में भी सुखदेव गोस्वामी वो कहते हैं ऐसे ग्रहमेदियों का जीवन कैसे चलता है। निद्राया ही रक्ते निद्राया ह्रियते नक्तम व्यवाये न च बाबय दिवा चाहते हया राजन कुटुंब वरने नवा। सो लाइफ टाइम ऑफ सच एनवियस हाउस होल्डर्स, प्रॉपर बोलते एनवियस, ऐसे जो जो ईर्ष्यालु गृहस्थों का या ग्रहमेदियों का जीवन कैसे चलता है। रात को निद्रा ही रखते ह्रियते नक्तम विवाय न चवया। तो नींद में या मैथुन करने में दिन दिवा चारते हया राजन कुटुंब वरने नवा। दिन कुटुंब को वरण वरण करने के लिए, वरण पोषण करने के लिए या पालन करने के लिए मेहनत करने में चला जाता है, यही उनका जीवन है। तो और आगे भी बोलते हैं देहापत्य कलत्रादिषु आत्मसैन्य शसत्सपि तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि न पश्यति। देह अपत्य मतलब बच्चे, कलत्र मतलब पत्नी, आदिशो ये सब एक्सेट्रा, इनको ही अपने आत्म सैन्येश्व सपि अपने सैनिक मानता है। सैनिक किसके किसके लिए होते हैं? रक्षा करने के लिए होते हैं। लेकिन ये नहीं जानता है तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति। वो लोग भी मर के जाएंगे, वो लोग भी मरने वाले हैं, ये देखता नहीं है। इसका अर्थ क्या है? वो सोचता है कि ये लोग मेरा रक्षा करेंगे और मैं इनको रक्षा करूंगा। तो पश्यन् अपि न पश्यति तस्य तेषां प्रमत्तो निधनं। प्रमत्त मतलब सबसे बड़ा पागल है ये व्यक्ति, तो मैड बोलते हैं ना। तो वो मैडनेस पागलपन में भी अलग अलग प्रकार का दर्जे का यू नो होता है, अलग अलग दर्जे होता है, दर्जा होता है, डिग्रीज ऑफ मैडनेस। सो मत्त मतलब पागल, उन्मत्त मतलब ज्यादा ही पागल, और प्रमत्त मतलब स्वभाव से उसका प्रकृति पागलपन का है। तो ये देखता नहीं है तस्य तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नपि। वो मर के जा रहे हैं, वो देखता नहीं है, वो सोचता है कि ये लोग मेरा रक्षा करेंगे। इसका दूसरे शब्दों में क्या अर्थ है कि मृत्यु के समय पर हम लोगों को इनके इनके आश्रय ग्रहण नहीं करना चाहिए, हम लोग भगवान को आश्रय ग्रहण करना चाहिए। दुनिया में सभी लोग आप देखो सोचते हैं क्यों बच्चों को वो लोग पालते हैं पोसते हैं, अंतिम समय में वो लोग हमारा देखभाल करेंगे करके। वो लोगों को पता नहीं ये बच्चे भी क्या है, निस्सहाय है, वो भी हमें मृत्यु से बचा नहीं सकते है, वो समझ नहीं पाते है। सिर्फ इसलिए परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने जब उनको उन्होंने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए मृत्यु के समय पर, अभी मैं 7 दिन में मरने वाला हूँ, तो इन सब का आप आश्रय ग्रहण मत करो, ये कुछ नहीं होने वाला। ये आत्म सैन्य असत्सु अपि, मतलब ये ऐसा सैन्य है जो मर के जाने वाला है। आप युद्ध कर रहे हो, संघर्ष संग्राम कर रहे हो, लेकिन क्या हो रहा है आपको पता है कि ये सब सेना मर के जाने वाला है, तो युद्ध करने का क्या फायदा है, आप हार जाएंगे मर जाएंगे आप युद्ध में। इसलिए जीवात्मा इस भौतिक प्रकृति के नियमों के प्रति संघर्ष कर रहा है इस भौतिक जगत में, लेकिन जिनका हम लोग आश्रय ग्रहण करते हैं वो लोग सब क्या करने वाले हैं, वो मर के जाने वाले हैं, इस युद्ध में हारने वाले हैं, लोग मरने वाले हैं, तस्य निधनम। तो इसलिए इनका आश्रय मत ग्रहण करो, आप भगवान हरि का आश्रय ग्रहण करो। ऐसे तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि श्रोतव्य कीर्तितव्य स्मर्तव्य शिच्यतो भयाम, वो आपको इस मृत्यु से भय से मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि वो सर्वात्मा है, सबके हृदय में है, वो भगवान है, वो ईश्वर है, वो हरि है वो। तो ऐसे लेकिन कृपण लोग इसको समझते नहीं है, वो लोग सोचते हैं कि उनको पूरा घर परिवार ही सारा का सारा है चीज, तो ये कृपण का लक्षण होता है। लेकिन इसके तद विरुद्ध ब्राह्मण कैसे होते हैं, ये तद अक्षरम गागी विदित्वास्मा लोकात् प्रैति स ब्राह्मणः। सो तो वो अपने शरीर को बुद्धिमानी से जीवन की समस्याओं को हल करने में लगाते हैं, तो ये दोनों अंतर है। ऐसी कृपण दुर्बलता अर्जुन समझ गए, वो बुद्धिमान है, अर्जुन भी बुद्धिमान है, वो समझ गए कि मैं अभी ऐसे कृपण दुर्बलता से दूषित हूँ, इसके कारण मुझे क्या करना चाहिए, भगवान के शरण में जाना चाहिए। तो दोष से ग्रस्त स्वभाव प्रच्छामि त्वाम धर्म सम्मोढचेता, मैं आपको पूछता हूँ मेरा धर्म, वो बोल रहे कि उसके कारण क्या हो गया उनको, उनको समझ में नहीं आ रहा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनका धर्म क्या है अभी। तो फिर यश्रेयसा निश्चितम ब्रूहि तन्मे, तो पहला हम लोग चर्चा कर रहे थे क्यों हमें गुरु को अभी जैसे भगवान को शरण में जा रहे हैं, भगवान कौन है, भगवान ही इज अ सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर, सबसे बड़ा गुरु है वो। इसका अर्थ है जो भी गुरु होते हैं उनके उनका जो अधिकार है वो भगवान से आता है, उनका जो ज्ञान है वो भगवान से आता है, और वो गुरु उनके प्रतिनिधि होते हैं भगवान कृष्ण के, इसीलिए भगवान क्या है वो सर्व ही सुप्रीम स्पिरिचुअल मास्टर, वो सर्वोच्च गुरु है, उनके उनके ऊपर कोई अन्य गुरु नहीं है, तो उनको अर्जुन शरणागत हो रहे। यहाँ पर शिल प्रभुपाद वो भी विख्यात है, हम लोग चर्चा कर रहे थे ना भगवद गीता के बारे में, तो हम लोगों ने एक विषय को चर्चा किया कैसे भगवान कृष्ण के द्वारा सीधी तरीके से भगवद गीता सुना जा सकता है, तो उससे पहले एक और पैराग्राफ में भूल गया एक्चुअली कि चर्चा करना, एक और विषय चर्चा करना, तो भगवद गीता के आदि गुरु और शिष्य कौन है, वो भगवान कृष्ण और अर्जुन है, इस तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसके बारे में कह रहे हैं। तो इसलिए वो सर्वोच्च गुरु है वो, उनको शरण में आ रहे हैं। तो जब हम लोग ऐसे कृपण दुर्बलता के प्रभाव में आ जाते हैं, हम लोगों को समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, धर्म सम्मूढ़ चेता, तो इसलिए पहले है प्रभुपाद ऐसे परप्लेक्सिटीज जो हमारे जीवन में जब संकट आ जाते हैं तो विशेष करके क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो चिंता में, तो वो पिछले श्लोक में वो था ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, वो दुविधा में द्वंद्व में पड़ गए थे। तो उस समय पर हमें गुरु के पास जाना चाहिए, ये गुरु का स्वीकार करने का जरूरत होता है। तो फिर उसके बाद में वो कहते हम दूसरे, हम बता रहे थे दूसरे श्लोक के दूसरे भाग में क्या वर्णन कर रहा है, शिष्य के लक्षण को वर्णन कर रहा है। यश्रेयसा निश्चितम ब्रूहितन में, आप निश्चित रूप से ये बताइए कि मेरे लिए क्या श्रेयस्कर है, ऐसे कह रहे हैं। तो शिष्य को क्या करना चाहिए, तस्मात जिज्ञासु, तस्मात गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम। तो गुरु के शरण में जाना चाहिए, वो भी वर्णन किया गया है। शिष्यस्ते हम स्वादिमान त्वाम प्रपन्नम, प्रपन्नम मतलब तो वो शरण में जा रहा है, वो श्लोक में भी वही वर्णन है, तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, दैट इज फ्रॉम भागवतम और उपनिषद, इट इज छांदोग्य उपनिषद, सम उपनिषद, मुंडक उपनिषद, भागवतम या दूसरे वो श्लोक तस्मात गुरु प्रपद्य, भागवतम ना 11th कैंटो भागवत। तो तस्मात गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तम, तो यही वही श्लोक को यहाँ पर भगवान भी बोल रहे कि प्रपन्नम मतलब शरण में जाना, शिष्य को गुरु के शरण में जाना चाहिए। प्रपद्येत यहाँ पर प्रपन्न शब्द आता है, वहां पर प्रपद्येत शब्द आता है, तो दोनों एक ही है, शरण में जाना चाहिए। जिज्ञासु श्रेय उत्तमम, क्या करना चाहिए, वो श्रेय के बारे में उनको जिज्ञासा करना चाहिए। यहाँ पर भी यश्रेयसा निश्चितम ब्रूहितन में श्रेय शब्द आता है, इस जिज्ञासा किसके बारे में कर रहे हैं वो, इस गाड़ी का क्या, नया डिजाइन का कार ऑटोमोबाइल आया है उसका क्या क्या है प्राइस है, या आजकल कितना रेट चल रहा है टोमेटो का, बहुत सारे जिज्ञासा होते हैं ना दुनिया में, लोग एक दूसरे को जिज्ञासा करते ही रहते हैं। तो मार्केट में जाएंगे तो बहुत सारा जिज्ञासा चलते रहते हैं, इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है, इसका रेट क्या है, ऐसे ऐसे जिज्ञासा नहीं करना है। जिज्ञासा मतलब श्रेय के बारे में, जो सर्वोच्च भलाई क्या होगा मेरे लिए, उसके बारे में हमें जिज्ञासा करना चाहिए। या लोग गुरु के पास जाते हैं, आप कुछ ना कुछ करके क्या कीजिए, कुछ ना कुछ करके मेरा स्वास्थ्य ठीक कीजिए, या बहुत ही गरीबी के कारण बहुत कष्ट आ रहा है, किसी न किसी तरह के ऐसे कुछ कीजिए कि बहुत सारा धन मिल जाए, ऐसे बहुत सारे भौतिक चीज़ों के साथ गुरु के पास जाते हैं। तो गुरु के पास भौतिक चीज़ों के लिए नहीं जाना चाहिए, तो परम सत्य के बारे में जिज्ञासा करने के लिए जाना चाहिए। श्रेय और प्रेय दो चीज़ होते हैं ना, हम लोगों ने चर्चा किया था। प्रेय मतलब अभी तुरंत हमें क्या है, आनंद प्रदान करने वाला, उसको प्रेय कहते हैं। तो ऐसे सभी जन धनम जनम सुंदरीम, ऐसे तो सर्वोच्च भलाई करने वाला भक्ति है वो, सो उसको जिज्ञासा करना चाहिए। यश्रेयसा निश्चितम ब्रूहितन में, या करियर गाइडेंस, मैरिज काउंसलिंग एक्सेट्रा 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 एक्सेट्रा, बहुत सारे आजकल चलता है ना, तो वो सब हमें गुरु के पास जाना नहीं चाहिए। हमें श्रेय के बारे में, अभी पांचवें श्लोक में श्रेयो भोक्तुम भैक्षम अपि अलोके, हमारे लिए श्रेय क्या है, भीख मांग के रहना, ऐसे अपने आप वो निर्धारित कर दिया था अर्जुन ने। और उसके पहले भी पहले अध्याय के 31वें श्लोक में नच श्रेयोन पश्यामि हत्वा स्वजन माहवे, मैं इस युद्ध में कोई श्रेय नहीं देख रहा हूँ, तो ऐसे वो निर्णय कर दिया था पहले। तो अभी वो द्विविधा में, पिछले श्लोक में द्विविधा में पढ़ने के बाद अभी वो गुरु के शरण में जा रहे हैं, सर्वोच्च गुरु के शरण में जा रहे हैं। तो ये गुरु को शरण में जाने का जरूरत है। तो पढ़िए तात्पर्य।
ये प्राकृतिक नियम है कि भौतिक कार्यकलाप की प्रणाली ही हर एक के लिए चिंता का कारण है, कब 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 उलझन मिलती है, अतः प्रामाणिक गुरु के पास जाना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को पूरा करने के समुचित पथ निर्देश दे सके। समग्र वैदिक ग्रंथ हमें ये उपदेश देते हैं कि जीवन की अनचाही उलझनों से मुक्त होने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। ये उलझने उस दबावी के समान है जो किसी के द्वारा लगाए बिना बहुत मुक्ति है।
न संसार दावा न ललली डलोक, हम लोग सुबह गाते हैं ना, कोई आग नहीं लगाते हैं फिर भी लग जाता है जीवन में, है ना। उसका अर्थ क्या है, संसार दावा न ललली डल, हम लोग तो अभी आग में जल तो नहीं रहे ना। तीन ताप या चिंताएं भी अग्नि की तरह जलते हैं ना हमारे हृदय में, है कि नहीं। जीवन में कितने तकलीफ देते हैं हम हृदय में, तो वो संसार दावा है। तो वो आते रहते चिंताएं आते रहते जीवन में, वो मन वो मन वो हृदय में वो फेंकता रहता है ऐसे चिंताओं को हमेशा, इसलिए लोग इतना पीड़ित रहते हैं मन के कारण। तो उनसे मुक्त होने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। उस श्लोक में ऐसे वर्णन किया गया, वो एक बादल के समान है जो बारिश लेकर आते, कृपा के जो बारिश है, भगवान क्या है, वो सागर है, वो कृपा के सागर है। उस कृपा के सागर का क्या, सागर से कुछ जल बादल के रूप में परिवर्तित होता है, वही गुरु है, वो कृपा को लेकर हमारे ऊपर बरसाते हैं। तब हम लोग इस जो जलती हुई गर्मी है उससे हम लोग मुक्त हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में जब हम लोग गुरु को मिलते हैं या उनका आश्रय ग्रहण करते हैं तो सभी चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं हम लोग, वो फल है। ऐसा होना चाहिए, उसका अर्थ है आप असली में आपने आश्रय ग्रहण किया गुरु का, नहीं तो कुछ गलती है, कुछ तो समस्या है। बाहर त्योर से हम लोग दीक्षा वगैरह ले सकते हैं, लेकिन असली आश्रय ग्रहण करना मतलब ये फल होना चाहिए, ठीक है। पढ़िए।
इस प्रकार विश्व की स्थिति ऐसी है कि बिना चाहे जीवन की उलझने स्वतः उत्पन्न हो जाती हैं। कोई नहीं चाहता कि आग लगे, किंतु फिर भी वह लगती है और हम अत्यधिक व्याकुल होते हैं। उपदेश देता है कि जीवन की उलझनों को समझने तथा उनका समाधान करने के लिए हमें परंपरागत गुरु के पास जाना चाहिए। जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है।
तो ये सब वैदिक वाङ्मय उपदेश देता है कि तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासुश्रेय उत्तमम्, तद विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत्, समित्पानीय श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, क्या है वो, ब्रह्मनिष्ठ, सो श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, वो श्लोक यहाँ पर बोलते हैं प्रभुपाद। और जिस व्यक्ति का प्रमाणिक गुरु होता है वह सब कुछ जानता है। आचार्यवान पुरुषो वेदो, वो भी उपनिषदों में बताया गया, आचार्यवान पुरुषो वेदो, सब कुछ जानता है जिस व्यक्ति का, यहाँ पर दो श्लोक को उल्लेख कर रहे प्रभुपाद। और अतः
मनुष्य को भौतिक उलझनों में न रहकर गुरु के पास जाना चाहिए, यही श्लोक का तात्पर्य है।
तो ये तात्पर्य है श्लोक का, व्हाट इज द नेसेसिटी ऑफ द स्पिरिचुअल मास्टर, क्यों हमें गुरु के पास जाना चाहिए, तो वो ठीक है। और
आखिर भौतिक उलझनों में कौन सा व्यक्ति पढ़ता है, वह जो जीवन की समस्याओं को नहीं समझता। रुद्रकारिक में 3:8-10 व्यग्र मनुष्य का वर्णन इस प्रकार हुआ है, यो एतदक्षरं कार्य विदित्वा स्मालोक प्रेति सर्वपर्ण, विपण वह है जो मानव जीवन की समस्याओं को हल नहीं करता और आत्म साक्षात्कार के विज्ञान को समझे बिना कुकुर सुकर की भांति संसार को त्याग कर चला जाता है। जीव के लिए यह मनुष्य जीवन अत्यंत मूल्यवान निधि है, इसका उपयोग वह अपने जीवन की समस्या को हल करने में कर सकता है। अतः जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह कृपण है, ब्राह्मण इसके विपरीत होता है, जो इस शरीर का उपयोग जीवन की समस्त समस्याओं को हल करने में करता है। एक अक्षरम गांधी विपास ब्राह्मणा आत्मबुद्धिवश कृपण या कंजूस लोग अपना सारा समय परिवार समाज देश आदि के अत्यधिक प्रेम में गवा देते हैं। मनुष्य प्राय जन्मों के आधार पर अपने पारिवारिक जीवन अंदर पत्नी बच्चों तथा परिजनों में असक्त रहता है। कृपण यह सोचता है कि वह अपने परिवार को मृत्यु से बचा सकता है, अथवा वह यह सोचता है कि उसका परिवार या समाज उसे मृत्यु से बचा सकता है।
हम चर्चा कर रहे थे ना वो सुखदेव गोस्वामी, आत्मसैन्यु सत्सुअपि प्रसन्न प्रमत्तो निधनम प्रसन्नपि न पश्यति।
ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चे।
या एक और चीज महत्वपूर्ण, तो क्या विशेषता है मनुष्यों का? कोई बोल सकते हैं हम लोग अच्छे परिवार में रह रहे हैं, पशु लोग ऐसे परिवार में नहीं रहते हैं, ये पारिवारिक स्नेह विशेषता है, ऐसे कोई सोच सकता है कि नहीं? लेकिन वो भी मनुष्य जीवन का विशेषता नहीं है। मनुष्य जीवन का विशेषता है सिर्फ आत्म साक्षात्कार। तो मनुष्य जीवन में इस पारिवारिक स्नेह में डूबे नहीं रहना चाहिए, एक व्यक्ति को पारिवारिक आसक्ति में डूबना नहीं चाहिए। वो पशु भी करते हैं ना, क्रूर सा क्रूर, क्या बोलते हैं उसको, वेरी यू नो, शेर सिंह वगैरह, वो लोग भी अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, वो लोग भी उनके प्रति स्नेह दिखाते हैं। यही काफ़ी नहीं है मनुष्य जीवन में? परिवार में रह के एक दूसरों को स्नेह, वी आर अ वेरी हैप्पी फैमिली, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, स्वीट होम या हैप्पी फैमिली, ऐसे एडवर्टाइज करने से ही काफ़ी नहीं है। वो पशु भी कर रहा है। प्रभुपाद एक उदाहरण देते थे, जब कानपुर में थे प्रभुपाद जी, किसी न किसी तरह वो क्या हो गया, वो बंदर का बच्चा क्या हुआ, छोटा बंदर अंदर आ गया खिड़की से, वो बाहर नहीं जा रहा था और बड़ा जो बंदर है वो अंदर नहीं आ पा रहा था, इसलिए वो चिल्लाने लगा बड़ा बंदर जो है। तो उनके भी प्रेम है, उनके भी स्नेह है। तो इसलिए मनुष्य जीवन में यही काफ़ी नहीं है। ठीक है, वो है तो है, वो नेचुरल स्वाभाविक है। जैसे हम लोग पिछले श्लोक में, पिछले अध्याय में देखा, जब दुर्योधन भयभीत था तो उनको प्रसन्न करने के लिए तस्य संजनयन हर्षम कुरु वृद्धा पितामह सिंहनादम विनोद्यश शंकम दग्मो प्रतापवान। तो उन्होंने शंख बजा के उसको उत्साहित किया, उन्होंने तो स्वाभाविक है, ठीक है, लेकिन वही काफ़ी नहीं है। मनुष्य जीवन में आत्म साक्षात्कार केंद्र होना चाहिए, आध्यात्मिक जीवन केंद्र होना चाहिए, कृष्ण भक्ति केंद्र होना चाहिए, ठीक है। ऐसे बहुत सारा चीज़ हम लोग सोच सकते हैं, मनुष्य जीवन ये विशेष है, उसके लिए विशेष है। हम लोगों ने बहुत बड़ा ऑटोमोबाइल बनाया, बहुत बड़ा इमारतें बांधा है, या हम लोग अच्छा हाउसिंग कॉलोनी में रहते हैं, ऐसे ये सब पशु भी कर रहे हैं, है ना। हनी बीज, उनका भी हाउसिंग कॉलोनी होता है ना, मधुमक्खियों का भी हाउसिंग कॉलोनी, अच्छा हाउसिंग कॉलोनी होता है ना, है कि नहीं? ये सब जो कर रहे हैं हम लोग, वो सब पशु भी कर रहे हैं, उसमें कोई बड़ा नहीं है। सो इसलिए कृष्ण मनुष्य जीवन में हमारे असली समस्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो है उसको सुलझाने के लिए हमें गुरु के पास जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर अर्जुन एक गुरु को, जो सर्वोच्च गुरु है, उनके शरण में जा रहे हैं।
ऐसी पारिवारिक आसक्ति निम्न पशुओं में भी पाई जाती है, क्योंकि वे भी बच्चों की देखभाल करते हैं। बुद्धिमान होने के कारण अर्जुन समझ गया था कि उसकी पारिवारिक सदस्यों के प्रति उसका अनुराग तथा मृत्यु से उनकी रक्षा करने की उसकी इच्छा ही उसकी कुजनों का कारण है। यद्यपि वह समझ रहा था कि युद्ध करने का कर्तव्य उसकी प्रतीक्षा का रहा था, किंतु कृपण दुर्बलता संतोष के कारण में अपना कर्तव्य नहीं निभा रहा था, अतः वह परम गुरु भगवान कृष्ण से कोई निश्चित फल निकालने का अनुरोध कर रहा है। कृष्ण का शिष्यत्व ग्रहण करता है, मित्रतापूर्ण बातें बंद करना चाहता है। गुरु तथा शिष्य की बातें गंभीर होती हैं, और जब अर्जुन अपने मान्य गुरु के समक्ष गंभीरतापूर्वक बातें करना चाहता है, जिसने कृष्ण भगवत गीता ज्ञान के आदि गुरु हैं और अर्जुन गीता समझने वाला प्रथम शिष्य है। अर्जुन भगवत गीता को किस तरह समझता है ये गीता में वर्णित है। तो भी मूर्ख संसार विद्वान बताते हैं कि किसी को मनुष्य रूप कृष्ण की नहीं बल्कि अजन्म कृष्ण की शरण ग्रहण करनी चाहिए। कृष्ण के अंत कथक ब्रह्म में कोई अंतर नहीं है। इस ज्ञान के बिना जो भगवत गीता को समझने का प्रयास करता है वह सबसे बड़ा मूर्ख।
तो हम लोगों ने चर्चा किया था ना उसके बारे में, कैसे भगवत गीता समझना चाहिए। श्लोक क्रमांक 8, नहीं तपस्यामि ममात्मद्याद्यच्चोकमुच्चोषणमिन्द्रियाणा अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरे इंद्रियों को सुखाने वाले इस शोक को दूर कर सके। स्वर्ग पर देवताओं के अधिपति की तरह इस धनधान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर सकूंगा। तो यहाँ पर ये कैसे हमारे जो समस्याओं को भौतिक उपाय से उनको हल नहीं कर सकते, वो अर्जुन बता रहे। तो विशेष करके श्रील प्रभुपाद दो तीन चीज़ों को बताते हैं। पहला है कि आर्थिक विकास के द्वारा हम लोग भौतिक समस्याओं को हल नहीं कर सकते हैं, या हमारे शिक्षण के द्वारा, आधुनिक शिक्षण के एकेडमिक एजुकेशन उसके बारे में, उससे हम लोगों को समस्याओं को हल नहीं कर सकते, या अंतरिक्ष यान करने से भी हम लोग इनको हल नहीं कर सकते हैं। तो पहले हमें समझना चाहिए कि जीवन की असली समस्याएं क्या है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये जीवन की असली समस्याएं हैं, उनको जानना चाहिए। तो वो कहाँ पर बताया गया, 13वें अध्याय में बताया गया कि वो जीवन की असली समस्याएं हैं। ज्ञान का लक्षण क्या होता है, इनको समझना, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषान दर्शन, तो ये जीवन की असली समस्याएं हैं, है ना। तो हमारे घर में पानी का सप्लाई नहीं हो रहा है, या मार्केट में इसका प्राइस बहुत बढ़ गया है, वो है वो नहीं है वो है ये वो नहीं है, तो ऐसे ये सब चीज़ वो वास्तविक समस्या नहीं है। तो असली समस्या है जन्म मृत्यु जरा व्याधि। इनको हम लोग कोई भी भौतिक जो उपाय से उनको सुलझा नहीं सकते हैं। आर्थिक विकास से क्या हम लोग सुलझा सकते हैं, आधुनिक जमाने में आर्थिक विकास करना चाहते हैं, भारत सुपर इकोनॉमिक सुपर पावर इन 2020, टेक्नोलॉजिकल एंड इकोनॉमिक सुपर पावर बाय 2020, वो APJ अब्दुल कलाम ने कुछ लिख डाला इंडिया 2020 करके। तो वो लोग क्या करना चाहते हैं भारत को, वो लोग आर्थिक दृष्टिकोण से और तकनीकी के दृष्टिकोण से बहुत शक्तिशाली बनाना चाहते हैं, अमेरिका के साथ स्पर्धा करना चाहते हैं। अमेरिका के साथ स्पर्धा करके क्या करने वाला है, अमेरिका लोग भी मर रहे हैं, वो भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि वहाँ पर भी है, वो क्या आर्थिक और तकनीकी के सुधार से वो सुलझा सके, उसको नहीं सुलझा सके। आप लोग शक्तिशाली बन के क्या सुलझा सकते हैं उसको, नहीं सुलझा सकते। कोई ऐसे औषधि देकर आप सुलझा सकते हैं क्या, आजकल बहुत बड़ा बहुत प्रगति का औषधीय विज्ञान बहुत प्रगति किया है, कुछ औषधि ऐसे डाल के जन्म मृत्यु जरा व्याधि को हम लोग रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते। तो ये सब चीज वो लोग कुछ ऐसा क्या हुआ है, नशा पान करके उसको भूलना चाहते हैं लोग, है ना। डॉक्टर्स भी ऐसे कुछ देते हैं ना इंजेक्शन, वो है ना जो पेन को भुला देता है, वो जस्ट इंटॉक्सिकेशन, दैट इज वो नशा है, बस नशा के मॉर्फिन। तो ऐसे कुछ नशा देकर उनको भुलाना चाहते हैं, लेकिन उससे वो सुलझा, वो वास्तविक जो समस्या है उसका हल होता है क्या, नहीं होता नहीं। सिर्फ बुला रहे हो उसको, या अंतरिक्ष में यान आजकल बहुत ही प्रचलित है, अंतरिक्ष यान। अभी हाल ही में कुछ पिछले साल या वो क्या है मंगलयान भारत ने भी क्या किया, उसके बारे में क्या हो गया? बीच बीच में ऐसे वो न्यूज में वो डाल देते हैं हम लोग गया करके, क्या हो गया उसके बारे में? कुछ रॉकेट भेजा उन्होंने, तो भेज के क्या करने वाले हो? क्या जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो गए तुम? मूर्खता, यहाँ पर इतने सारे खेत ऐसे ही पड़ा है, कोई खेती करने वाला नहीं है, वहां पर जाके वेजिटेबल बन गए। सच नॉनसेंस, सच नॉनसेंस, सच स्टूपिड रैस्कल्स देयर। उसके लिए इतना खर्चा करता है लोग, और बीच में कभी कभी समुंदर में जाके डूब के मर जाता है। तो क्या है ये सब चीज कर रहा है लोग? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो गए, है ना? जब उसको पूछा जाता है क्यों इतना पैसा बर्बाद करके आप ऐसे जा रहे हैं, हमारे देश के लिए ड्रीम होना चाहिए, ड्रीम, वी शुड बी प्राउड ऑफ, वी आर अचीविंग अवर ड्रीम्स। वो क्या ड्रीम? चाइल्डिशनेस है। ड्रीम वास्तविकता नहीं है ना। सो ऐसे मनोधर्म, मनोकल्पना में, मनोधर्म में, मानसिक स्तर पर, मनोरथ में सब लोग वही बड़े बड़े तथाकथित वैज्ञानिक स्पेस साइंटिस्ट बोलते हैं उनको, हाँ स्पेस स्पेस डॉक्टर। तो ऐसे क्या फायदा है, इनको सुलझा सकते हैं क्या? इसलिए भागवत में वर्णन आता है सुदुर्जयम, इन चार चीजों को जीतना क्या है, बहुत ही मुश्किल है। सुदुर्जयम बहुत ही मुश्किल है। आर्थिक विकास के द्वारा इनको सुलझा सकते हैं, तो इनको तो सुलझा नहीं सकते हैं। इनको छोड़िए, भौतिक समस्याओं को भी हम लोग इनको ये सब करने से सुलझा नहीं सकते। नहीं तो अर्जुन ये नहीं बताते थे कि मैं देवताओं के समान साम्राज्य को प्राप्त करने के बाद भी मैं इन समस्याओं को सुलझा नहीं, सिर्फ आप ही मुझे मेरा समस्याओं को सुलझा सकते हैं, ऐसे वो भगवान के शरण में जा रहे। तो भौतिक समस्याओं को हम लोग भौतिक उपाय से सुलझा नहीं सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में इसके बारे में बहुत विस्तार से वर्णन आता है। श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 29वें अध्याय 29 चैप्टर, तो 32, 23 और 34 श्लोक में वो वर्णन आता है इसके बारे में, कैसे हम लोग ये कोई भौतिक उपाय से हम लोग हमारे समस्याओं को सुलझा नहीं सकते, ऐसे कहते। तो वहां पर वर्णन आता है दुखेशु, ये वहां पर वर्णन आता है कि कैसे ये जीवात्मा इन त्रिविध तापों को सुलझाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं भौतिक जगत में, लेकिन फिर भी कर नहीं पाता है। वहाँ पर उदाहरण दिया गया, जैसे एक कुत्ता है वो इधर उधर भागता रहता है, एक थोड़ा क्या किसके लिए कुछ रोटी के लिए, तो फिर भी वो पा नहीं पाता है। ऐसे जीवात्मा क्या है, इस जग भौतिक जगत में सुख प्राप्त करने के लिए बहुत सारा ऐसा प्लान कर रहा है, लेकिन और इस त्रिविध तापों को सुलझाने के लिए कोशिश कर रहा है ना। एक उदाहरण दे सकते हैं कोई, त्रिविध तापों को हम लोग कैसे सुलझाना चाहते सुलझा सकते हैं? वो अभी हाल ही में वो आए थे ना अच्युत प्रभु, बोल रहे थे सब जगह अभी थोड़ा गर्मी गर्मी है करके वो लोग क्या बना दिया, एसी बना दिया, तो सब जगह एसी लगा देते हैं। लेकिन ये मूर्खों को पता नहीं है कि ये एसी गर्मी बढ़ाता है और गर्मी बढ़ाता है, है ना? तो एक जो उपाय है वो सभी कई सारे समस्याओं का कारण बन जाता है। तो ऐसे कभी भी सुखी नहीं हो सकते, या कोई भी ये त्रिवी तापों के जो समस्याओं को हल नहीं कर सकते। हम लोग फैन लगाते हैं ताकि हम लोग क्या है हवा में सो जाएंगे करके, लेकिन फैन से क्या हो जाता है, सुबह उठ के सिर्फ बॉडी पेन आ जाता है बस, और कुछ नहीं होता। और गर्मी के मौसम में वो सिर्फ गर्म हवा को भेजता है बस, वो उपाय नहीं है वो एक। तो इसलिए सिर्फ संघर्ष ही चलता है। और यहाँ पर आगे के श्लोक में वर्णन आता है कैसे ये भौतिक उपायों से, भौतिक हल से हम लोग जब समस्याओं को सुलझाने के लिए कोशिश करते हैं, तो सिर्फ वो समस्या को हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को उसको स्थानांतरित कर रहे, बस वहां पर उदाहरण दिया, यथा ही पुरुषो बारम शिरसा गुरु मुद्वहम तम स्कंदे न सा आदत्ते तथा सर्व प्रतिक्रिया। जैसे एक सर के ऊपर वो बहुत सारे बार लेकर जा रहा है, वो बहुत भारी हो जाता है तो उसको उठा के कंधे पर, स्कंदे न, कंधे पर डाल देता है, उससे क्या बार से हम लोग मुक्त हो जाएंगे? नहीं होंगे। तो यही भौतिक उपाय है बस, और ये भौतिक उपाय कई समस्याओं का कारण बन जाता है। श्रील प्रभुपाद उस तात्पर्य में बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि ये लोग सोचा कि हम लोग एक पहले जमाने में पाँव को उपयोग करके एक जगह से दूसरे जगह चल के जाते थे, या कोई बैलगाड़ी हो या कोई हॉर्स कैरेज मतलब घोड़े का, तो रथ से वो एक जगह से दूसरे जगह जाते थे। ये लोग अपने आप को बुद्धिमान समझे, तुम क्या पुराने जमाने में हो, हम बहुत प्रगति किया करके ऑटोमोबाइल बना दिया। अभी ऑटोमोबाइल क्या है, ये मोटर कार कितने सारे समस्याओं का कारण है। जैसे अभी हम लोग यहाँ पर चर्चा कर रहे थे, इतने सारे पाँव 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 ये सब इतना समस्या है, साउंड ऑफ पोल्यूशन, शांति से बैठ नहीं सकते, कुछ चर्चा नहीं कर सकते, कितने सारे धुआं पोल्यूशन उसके कारण बहुत सारे ऐसे प्राकृतिक समस्याएं भी होते हैं, कितने सारे दुर्घटनाएं होते हैं, कितने सारे लोग मर जाते हैं, और उसके लिए कितना सारा क्या करना पड़ता है, कारखानों को, हजारों कारखानों को लगाना पड़ता है, स्थापित करना पड़ता है हजारों की संख्या में एक ऑटोमोबाइल बनाने के लिए। उसको सिर्फ वो ये लोग टाटा या मारुति या जन हुआ क्या बेंज क्या बोलते हैं उसको, वो लोग सिर्फ उसको असेंबल करके अपना सील डाल देते हैं, लेकिन उसके पीछे हजारों कारखाने लगे हैं उसको बनाने के लिए। प्रकृति का कितना शोषण होता है, और ऑयल के लिए उसको ईंधन चाहिए ना, उसको चलाने के लिए उसको कितने वो क्या है ड्रिलिंग करना पड़ता है, ड्रिलिंग करना वो भी बहुत खतरनाक, उसके लिए बहुत सारे भूकंप और ज्वालामुखी होते हैं। जैसे वो सोने को निकालने के लिए हिरण्यकश्यप ने खुदाई की थी ना पृथ्वी को, पृथ्वी अपने स्थिति को छोड़कर गिर गई थी गर्भोदय, ऐसे ही हो जाता है। और उसके बीच में क्या है, कितना मनुष्य को उग्र कर्म करता है, ये लोग सोचता है हम लोग अच्छी तरह से वी विल कूल ड्राइव, क्या ड्राइव है वो, नाइस ड्राइव, कूल ड्राइव, और उसको ड्राइव करने के लिए भी जगह नहीं है, और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फ्लाईओवर बनाओ, वो बनाओ, ये बनाओ, मेट्रो बनाओ, क्या बनाओ, ऐसे बहुत सारे ये बोझा बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना, बढ़ाते जाना। माया सुखाय बरमुद भवतो विमूढान, ये मूर्ख लोग बरम बरम मतलब भार को बढ़ाते जाते हैं अपने सर सर के कंधे के ऊपर। यहाँ पर बार के बारे में वर्णन हो रहा है ना, सर के ऊपर अभी बार बोझा है, उसको क्या है कंधे के ऊपर डाल दिया है, और ये लोग सिर्फ वह उसको स्थानांतरित नहीं कर रहे, उसको और बढ़ा रहे उसके बार को। ये आधुनिक समाज है। तो ऐसे तकनीकी के प्रगति से या आर्थिक विकास करने से या अंतरिक्ष में जाने से कुछ समस्याओं का समाधान नहीं होता है, सिर्फ भगवान के शरण में जाना चाहिए। कोई कोई जो नास्तिक मूर्ख रैस्कल जो वैज्ञानिक या ऐसे दार्शनिक लोग, क्यों भगवान को लेकर आ रहे हो ऐसे बोलते हैं तुम, क्या क्या तुम इसको समस्याओं को सॉल्व करोगे? तुम तो कंप्लीट फेलियर हो गया। तुम क्यों हो? हम लोग भगवान के शरण में जाना चाहते, तुम उसको क्यों रोकते हो? भगवान के विरुद्ध वो बहुत प्रचार करते हैं। तुम तो कुछ नहीं कर पाए, हम लोग कुछ समझे, कुछ भगवान ने बताया सर्वधर्मां परित्यज, मेरे शरण में आ जाओ, आपकी रक्षा करूंगा करके हम उनके शरण में जा रहे हैं। तुम और बोलते हो भगवान नहीं है, भगवान को मत लेकर आओ। अच्छा अच्छा दूसरों को सभी गुमराह करते हैं ऐसे लोग, पूरा मासूम लोगों को, बड़ा बड़ा अपने आप को वैज्ञानिक करके क्या कर पाए आज तक? सिर्फ समस्याओं को बढ़ा दिया, उग्र कर्म बढ़ता है ऐसे। तो इसलिए यहाँ पर अर्जुन कह रहे हैं, अर्जुन भगवान के शरण में जा रहे हैं। तो समस्या का हल कैसे होगा? आध्यात्मिक गुरु भगवद गीता श्रीमद् भागवतम और भगवान कृष्ण के शरण में आश्रय ग्रहण करने से ही हम इन समस्याओं को हल कर सकते हैं। ऐसे प्रगति के द्वारा हम लोग तथाकथित तकनीकी विज्ञान आर्थिक विकास या अंतरिक्ष में जाने से समस्याओं का हल नहीं होता है, और समस्या का भार हम लोग बढ़ाते जाएंगे। तो इसलिए गुरु के पास जाना चाहिए। और क्योंकि जैसे हम लोग पिछले श्लोक में चर्चा कर रहे थे, गुरु भगवान ही सर्वोच्च अधिकारी है। परम सत्य का एक परिभाषा है कि वो ज्ञान के ऊपर अधिकारी होना चाहिए, सभी ज्ञान उनसे आना चाहिए। वो एक परम सत्य का परिभाषा है, या परम सत्य भगवान कृष्ण परम सत्य इसलिए है क्योंकि सभी ज्ञान उनसे आता है ना? सभी ज्ञान उनसे आता है, आप जानते हैं ना, हम लोगों ने चर्चा किया था, दो दो तरीका है ज्ञान प्राप्त करने का। तो अंत में जो आरोपण ऊपर से जो नीचे आता है, अधिकृत व्यक्ति के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है वो सर्वोच्च है, परम है, वो परिपूर्ण है। तो वो कहाँ से आता है? अंत में भगवान से ही आता है, वो भगवान से ही आता है। जो महाजन है, परंपरा के आचार्य है, उनका भी ज्ञान कहाँ से आता है? भगवान से आता है। धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम। तो हम लोग धर्म के जो जो महाजन है, धर्म के जो सिद्धांतों को रहस्यों को जानते हैं, उनके हृदय में है, लेकिन उनको भी कहाँ से आता है? वो भगवान से आता है। और भगवद गीता में भी अलग अलग जगह पर भगवान बोलते हैं कि मैं ज्ञान के ऊपर क्या हूँ, मैं ही सर्वोच्च अधिकारी हूँ। और भारत में भी वेदों को भगवान ने ही दिया है। अस्य महतस्य बृहदारण्यक उपनिषद में ऐसे वर्णन आता है, अस्य महतस्य भूतस्य निश्वासितम एतद् यजुर्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो तर्वांगीरसः। ऐसे बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णन आता है कि वेदों का क्या भगवान ने, वो उनके श्वास के द्वारा उन्होंने वेदों को बोल दिया। हम लोग देखते हैं ब्रह्माक्षर समुद्भवम, परम सत्य के सत्य से सभी ये वेद आए, ऐसे तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं। और छठे स्कंद में भागवत में भी वेदो नारायण साक्षात, वेद नारायण है भगवान। ज्ञान मतलब वेद है ना, वेद का अर्थ होता है ज्ञान होता है, इसलिए वो ज्ञान के ऊपर अधिकारी है वो भगवान। तो यहाँ पर ऐसे अधिकारी को अर्जुन समर्पित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आप ही इसको सुलझा सकते तो इसका अर्थ होता है गुरु, हम लोग चर्चा कर रहे थे, उनके प्रतिनिधि होना चाहिए, उनके भक्त होना चाहिए, तभी वो गुरु हो सकते। इसलिए श्रील प्रभुपाद यहाँ पर इस तात्पर्य में गुरु के भी लक्षण बता रहे हैं। किब विप्र किब न्याशी किब शूद्र के नया यही कृष्ण तत्व व्यक्ता से ही गुरु है। जो कृष्ण तत्व को जानते हैं वो गुरु है। वो क्या सन्यासी हो, विप्र हो, शूद्र हो, कोई भी हो, जो जानते हैं कृष्ण तत्व को, और पद्म पुराण से भी यहाँ पर आता है षट कर्म निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा अवैष्णवो गुरु रस्याद वैष्णवो सुपचितो गुरु। गुरु ऐसे हैं जो वैष्णव हैं वो गुरु हो सकते हैं। एक व्यक्ति ब्राह्मण हो सकता है, सभी मंत्र तंत्र विशारद है, लेकिन वो भक्त नहीं है भगवान का, तो वो गुरु नहीं हो सकते। क्योंकि जब गुरु भगवान के भक्त होते, उनके प्रतिनिधि होते, उनके प्रतिनिधित्व करते हैं, तभी भी भगवान उनको ज्ञान प्रदान करते हैं हमें मार्गदर्शन करने के लिए। वो भक्त नहीं है तो कैसे भगवान से उनको ज्ञान प्राप्त होगा? तो इसलिए वही हमारे समस्याओं को, ऐसे गुरु ही हमारे समस्याओं को हल कर सकते हैं, नहीं तो वो व्यर्थ है। ऐसे किसी का तथाकथित गुरु का आश्रय ग्रहण करना, वैज्ञानिकों का आश्रय ग्रहण करना, या हमारे नेता जो है आर्थिक विकास में लगे हैं उनका आश्रय ग्रहण करना या अंतरिक्ष में जाना, वो कुछ हेल्प सहायता नहीं करने वाला। तो अर्जुन भी आप देखिए, अर्जुन भी क्या है, वो भी बहुत बुद्धिमान था, उनको भी शास्त्र का ज्ञान था, फिर भी वो सुलझा नहीं सके। तो कोई ऐसे बोल सकता है कि हम लोग सिर्फ भगवद गीता पढ़ेंगे और कृष्ण भक्ति का अभ्यास करेंगे, ऐसे भी प्रश्न उठ सकता है ना, इतने सारे ग्रंथ ने छपा दिया गया है तो हम उसको पढ़ के क्यों गुरु का जरूरत होता है? अर्जुन को तो भी शास्त्रों का ज्ञान था, पिछले अध्याय में हम वो उल्लेख कर रहा था ना, आतताइयों को नहीं मार सकते हम लोग धर्मशास्त्र के अनुसार, ऐसे ऐसे अलग हमने ऐसे सुना है गुरुजनों से परंपरा से, उनको भी शास्त्र का ज्ञान था, फिर भी वो अपने समस्या को हल नहीं कर सके। तो ये भी हमें जानना चाहिए। और तो अंत में सिर्फ जो भगवान को शरण में जाते हैं वही भौतिक समस्याओं को सुलझा सकते हैं। लेकिन भगवान इस जगत में हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता, भगवान इनके द्वारा कृपा करते हैं। पढ़िए।
मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता जो मेरी इंद्रियों को सुखाने, यद्यपि अर्जुन धर्म तथा सदाचार के नियमों पर आधारित अनेक कल्प प्रस्तुत करता है, किंतु ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने गुरु भगवान श्री कृष्ण की सहायता के बिना अपनी असली समस्या को हल नहीं कर पा रहा है। समझ गया था कि उसका तथाकथित ज्ञान उसकी उन समस्याओं को दूर करने में व्यर्थ है जो उसके सारे अस्तित्व शरीर को सुखाए दे रही थी। उसे इन उलझनों को भगवान कृष्ण जैसे आध्यात्मिक गुरु की सहायता के बिना हल कर पाना असंभव लग रहा था। शैक्षिक ज्ञान विद्वता उच्च पद ये सब जीवन की समस्या का हल करने में व्यर्थ है, यदि कोई इसमें सहायता कर सकता है तो वह है एकमात्र गुरु। अपना निष्कर्ष ये निकला कि गुरु जो शक्त कृष्ण भावना भावित होता है वही एकमात्र प्रमाणिक गुरु है और वही जीवन की समस्या को हल कर सकता है। भगवान चैतन्य ने कहा है कि जो कृष्ण भावना मत के विज्ञान में दक्ष हो।
तो यहाँ पर एकेडमिक नॉलेज, स्कॉलरशिप, हाई पोजीशन, ऑल आर यूजलेस इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ। ओके,
भगवान चैतन्य का है कि जो कृष्ण भावना ज्ञान में दक्ष हो, कृष्ण तत्वेता हो, चाहे वह किसी जाति का हो, वही वास्तविक गुरु है। किवा विप्र किवा न्यासी शूद्र के न नया ये कृष्ण तत्वेता से गुरु है। कोई व्यक्ति चाहे वह विप्र वैदिक ज्ञान में दक्ष हो, निम्न जाति में जन्मा शूद्र हो या कि सन्यासी, यदि वह कृष्ण के विज्ञान में दक्ष कृष्ण तत्ववेता है तो वह यथार्थ प्रमाणिक गुरु है। चैतन्य चरितामृत 8:28। अतः कृष्ण तत्ववेता हुए बिना कोई भी प्रमाणिक गुरु नहीं हो सकता, तो वैदिक साहित्य में भी कहा गया है। दक्ष नहीं है तो गुरु बनने का पात्र नहीं है, किंतु शूद्र यदि वैष्णव या कृष्ण भक्त है तो गुरु बन सकता है। पुराण संसार की समस्याओं, जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु की निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। विश्व के विभिन्न भागों में ऐसे राज्य हैं जो जीवन की सारी सुविधाओं से तथा संपत्ति एवं आर्थिक विकास से पूरी है, किंतु फिर भी उनके सांसारिक जीवन की समस्याएं ज्यों की त्यों बनी हुई है। वे विभिन्न साधनों से शांति खोजते हैं, किंतु वास्तविक सुख उन्हें कभी नहीं पाता है जब वे कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रमाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूर्वक भगवद गीता तथा श्रीमद भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। यदि आर्थिक विकास तथा भौतिक सुख किसी के पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय अव्यवस्था से उत्पन्न हुए शोकों को दूर कर पाते तो अर्जुन यह न कहता कि पृथ्वी का अप्रतिम राज्य या स्वर्गलोक के देवताओं की सर्वस्था भी उसके शोकों को दूर नहीं कर सकती। इसलिए उसने कृष्ण धामनामृत का ही आश्रय ग्रहण किया और यही शांति तथा समरसता का उचित मार्ग है। आर्थिक विकास में विश्व आधिपत्य प्रकट प्राकृतिक प्रलय द्वारा किसी भी क्षण समाप्त हो सकता है, यहाँ तक कि चंद्रकों जैसे कुछ लोगों की यात्रा भी जिसके लिए मनुष्य प्रतिशील है एक चक्के में समाप्त हो सकती है। भगवगीता इसकी पुष्टि करती है। श्रेय पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति, जब पुण्य कर्मों के फल समाप्त हो जाते हैं तो मनुष्य सुख के शिखर से जीवन के निम्नतम स्तर पर गिर जाता है। इस तरह से विश्व के अनेक राजनीतिज्ञों का पतन हुआ है। ऐसे
तो प्रभुपाद बोलते थे ना, नेहरू तो कुत्ता बन गया और कोई एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे ज्योतिष ने ऐसे बताया, प्रभुपाद ने सुना उनसे। और गांधी को भी हत्या हो गया है ना, तो वो लोग भगवान को छोड़कर तो कुछ करने के लिए कोशिश कर रहे थे। और जॉन एफ कैनेडी, वो उसके उपस्थिति में बहुत सारे ऐसे अंतरिक्ष में वगैरह जाने का प्रयास चल रहा था, उसका ही मृत्यु हो गया है ना।
ऐसा अधपतन शोक का कारण बनता है, अतः यदि हम सदा के लिए शोक का निवारण करना निवारण चाहते हैं तो हमें कृष्ण की शरण ग्रहण करनी होगी। जिस तरह अर्जुन ने की, अर्जुन ने कृष्ण से प्रार्थना की कि वे उसकी समस्या का निश्चित समाधान करें और यही कृष्ण भावनामृत की विधि है।
सो कृष्ण भावनामृत किसके लिए है? ये जीवन की समस्याओं को, जन्म मृत्यु जरा व्याधि को निश्चित रूप से सुलझाने के लिए कृष्ण भावनामृत। सो अगला श्लोक
संजय उवाच एव मुक्त्वा ऋषिकेशं राकेश परं तप नायोच्य इति गोविन्दम् उपाति बहुव।
संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं को तथा दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। ऐसे कहकर भगवान ऋषिकेश को, जो गुड़ाकेश परम तपा, यहाँ पर दो नामों से उनको संबोधित कर रहे हैं संजय, गुड़ाकेश और परम तप। गुड़ाकेश का तो अर्थ हम लोगों ने पिछले अध्याय में समझा, यहाँ पर परम तप शब्द का वर्णन करते हैं कि धृतराष्ट्र सोच रहा था कि अभी अर्जुन युद्ध नहीं करेंगे तो प्रसन्न हो रहे, वो तो अभी युद्ध नहीं करेंगे, सब कुछ त्याग करके वो संन्यास लेकर वन में प्रवेश करेंगे, क्योंकि ये सब उन्होंने सुना ना, भिक्षा मैं भिक्षा लेकर मैं जीवित रहूंगा, ये सब सुन लिया, धृतराष्ट्र प्रसन्न हो गए। लेकिन ये परम तप शब्द को उपयोग करके वो क्या कर रहा है, संजय क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, वो शत्रुओं को हत्या करेंगे, अभी भगवान उनको उपदेश देंगे। नयोच्य इति गोविंदम मुक्त्वा तुष्णिम बभूवः, नयोच्य इति गोविंदम, हे गोविंद मैं युद्ध नहीं करूंगा। उक्त्वा तुष्णिम बभूवः, तुष्णिम बभूवः, तुष्णिम मतलब चुप हो जाना, शांत हो जाना, ऐसे हो जाते हैं। पढ़िए उसको तात्पर्य को, ऋषिकेश शब्द प्रॉपर क्या बोलते, पढ़िए उसको तात्पर्य को।
धृतराष्ट्र को यह जानकर परम प्रसन्नता हुई होगी कि अर्जुन जितना करके युद्ध भूमि छोड़कर भिक्षा तन करने जा रहा है, किंतु संजय ने उसे पुनः यह कहकर निराश कर दिया कि अर्जुन अपने शत्रुओं को मारने में सक्षम है, परंतु यद्यपि कुछ समय के लिए अर्जुन अपने पारिवारिक स्नेह के प्रति मिथ्या शोक से अभिभूत था, किंतु उसने शिष्य रूप में अपने गुरु श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। इससे चित होता है कि शीघ्र ही वह इस शोक से निवृत्त हो जाएगा और आत्म साक्षात्कार या कृष्ण भावना व्रत के पूर्ण ज्ञान से प्रकाशित होकर पुनः युद्ध करेगा, इस तरह धृतराष्ट्र का हर्ष कम हो जाएगा।
तो ऋषिकेश शब्द का वो अर्थ है कि भगवान अभी उनको मार्गदर्शन करेंगे। कितनी बार आया अभी ऋषिकेश अब तक भगवद गीता में? चौथी बार।
तम उवाच ऋषिकेशः प्रहसन्नीव भारत सेनयोर्वयोर्मध्ये विशिदन्तमिदं वचः।
हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोकमग्न अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। सो भगवान अभी हंस रहे हैं। प्रहसन्नीव भारत, तो फिर से ऋषिकेश शब्द आता है पांचवी बार। तम उवाच ऋषिकेश प्रहसन्नीव भारत। सो भारत मतलब ये धृतराष्ट्र को संबंधित हो रहा है, भरत वंशी धृतराष्ट्र। सो प्रहसन्नीव अर्जुन, भगवान हंसने लगे। क्यों हंसने लगे? मेरे जो मित्र है वो अभी शिष्य के रूप में अब मुझे शरण में आ रहा है, इसलिए वो उनको हंसी आ गया। तो वो कहते हैं, और प्रपद कहते हैं अभी ये मूर्ख की तरह बर्ताव कर रहा है, इसके लिए अभी क्या है शिक्षा देना बहुत ही जरूरत है, ज्ञान प्रदान करना, इसलिए भगवान हंस रहे थे। और प्रपद ये भी कहते हैं कि ऐसे होता है, ये लोग युद्ध कर रहे हैं, कभी ऐसे होता है ना, राजनीतिज्ञ लोग लड़ते रहते हैं, ये मेरा देश मेरा जगह है, ये मेरा जगह है मेरा देश है, वास्तव में किसका जगह है वो सब? वो भगवान कृष्ण का है। इसको देखकर भगवान हंसते हैं। वैसे ये लोग झगड़ रहे थे, अर्जुन भी क्या कह रहा है, मेरा राज मेरा ये वो, अपने देहात्म बुद्धि में आया था, इसलिए भगवान हंस रहे थे। और फिर से यहाँ पर देखिए, सेनयोर वयोर मध्य ये श्लोक आता है, ये शब्द आता है। तो कहाँ कहाँ आया था ये सेनयोर वयोर मध्य, किसी को याद है? 21वां श्लोक में, पहले अध्याय के 21वां श्लोक में पहले अर्जुन ने कहा सेनयोर वयोर मध्य मुझे रथ को लेकर जाइए हे अच्युत बोलते। फिर 24वां श्लोक में क्या कहते हैं? संजय कहते हैं कि भगवान कृष्ण उनको दोनों रथ को दोनों सेना के बीच में लेकर गए। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किसलिए, इस तात्पर्य से आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे थे किसलिए भगवान, वास्तव में अर्जुन तो युद्ध करने के लिए तैयार हो गए थे, फिर भी भगवान उनके भ्रम में डाल के उनको ऐसे प्रेरणा दिया कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में लेकर जाओ करके। क्योंकि सैन्य को निरीक्षण करने के लिए दोनों सेनाओं के बीच में जाने का जरूरत नहीं था, दुर्योधन भी पहले उसके पहले निरीक्षण किया ना, सैन्य शक्ति को माप दिया, सब किया उसने भी। तो ये भगवान की प्रेरणा से हो रहा है सब कुछ। तो भगवान फिर दोनों सेना के रथ के बीच में लेकर गए। और भीष्मदेव से हम लोग पहले भागवत से उल्लेख कर रहे थे हम लोग कि भगवान दोनों सेनाओं के बीच में रथ, अपने मित्र के आदेश से दोनों सेनाओं के बीच में रथ को स्थापित करके जो दूसरे सेना के ऊपर जो दृष्टिपात करके उनके आयु को कम कर दिया भगवान ने। तो वो एक है, युद्ध कर रहे हैं यहाँ पर, हत्या हो रहा है, वायलेंस हो रहा है, फिर भी भगवान के कृपा से भगवान के उपस्थिति में उनका मृत्यु होने के कारण वो सब लोग भगवत धाम वापिस चले जाएंगे। भगवान का हत्या करना और हिंसा में लगाना भी क्या होता है, वो मंगलमय होता है, उनका कभी अमंगल कुछ करते ही नहीं भगवान, तो वो एक चीज। और दूसरा चीज इस तात्पर्य में प्रभुपाद कह रहे हैं कि दोनों से दोनों सेनाओं को भगवद गीता भगवान सुनाना चाहते थे, इसलिए वो बीच में गए। तो दो दृष्टिकोण से भगवान सबका भलाई करने के लिए सोच रहे हैं, इसलिए ऐसे अर्जुन को प्रेरणा देते हैं कि आपसे वो ये पूछने के लिए, बताने के लिए कि दोनों सेनाओं के बीच में युद्ध को, रथ को लेकर जाने के लिए, और उसको स्थापित करते हैं। और विषिदंतम इदम वचः, अर्जुन अभी तक रो रहे हैं, अभी हम लोगों ने चर्चा किया ना, रो रहे थे अश्रुपूर्ण कुले क्षणम, और पिछले अध्याय में भी ऐसे आया था कि वो रो रहे थे करके, अभी तक रो रहे। ऐसे रोते हुए अर्जुन को दोनों सेनाओं के बीच में भगवान ने ये भगवद गीता सुनाई। तो सभी लोगों ने सुना भगवद गीता, लेकिन सबको, हम लोग ये चर्चा किया ना भगवद गीता का फल या सबके लिए है भगवद गीता, सभी लोगों ने सुना भगवद गीता, लेकिन फिर भी सबको एक ही फल नहीं मिलता। धृतराष्ट्र ने भी भगवद गीता सुनी, लेकिन फिर भी उसको कुछ लाभ फायदा नहीं हुआ। तो क्या फल है भगवद गीता सुनने का बताइए? नष्ट मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मया च्युता स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये पद वचनम धवा। अथवा उद्देश्य क्या है भगवद गीता का? भगवद गीता का उद्देश्य है कि देहात्म बुद्धि को नष्ट करना और हमें भगवान के साथ जो हमारे नित्य संबंध है उसको स्थापित करना। क्या वो फल सबको मिला? नहीं मिला, सिर्फ अर्जुन को मिला। वो तो वो व्यक्ति के ऊपर, योग्यता के ऊपर निर्भर रहता है। एक और चीज़ यहाँ पर हमें जानकारी मिलता है कि भगवद गीता सबके लिए है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं वेद शास्त्रों को सभी को पढ़ने के लिए अनुमति नहीं दिया जाता था, शूद्रों को अनुमति नहीं दिया जाता था। आप जानते हैं ना रामायण में एक शूद्र ऐसे वेद पढ़ रहा था या तपस्या कर रहा था, राम ने उनको हत्या कर दिया। वो उसके लिए नहीं है, वो क्योंकि उसके उसका गलत फायदा उठाएंगे वो लोग। ऐसे आजकल कलयुग में बहुत सारे एकेडमिक स्कॉलर्स जो ऐसे होते हैं ना, वो कोई परंपरा के गुरु के द्वारा कुछ मार्गदर्शन नहीं लिया उन्होंने, कोई शिक्षा नहीं लिया, प्रशिक्षण नहीं लिया, ऐसे लोग वेदों को पढ़ते हैं और उनको क्या करते हैं, तो गलत अर्थ देते हैं, उसको मिस इंटरप्रेट करते हैं। तो ये शूद्र लोग वेदों को गलत फायदा उठाने का एक उदाहरण है। ये वो शूद्र है क्योंकि उन्होंने तो प्रशिक्षण नहीं लिया। उन्होंने जो ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण नहीं लेते हैं, तपस्या में प्रशिक्षण नहीं लेते हैं गुरु के मार्गदर्शन में, वो लोग क्या है? शूद्र है। तो वो शूद्र लोग क्या है? बड़ा बड़ा शास्त्र की बन रहा है यूनिवर्सिटी में, क्योंकि कोई जेन्यून महान आचार्य के अनुपस्थिति में ऐसे जुगनू क्या हो जाते हैं, बहुत है ना प्रभावशाली बन जाते हैं। तो ये शूद्र का लक्षण है। लेकिन भगवद गीता क्या है? वो सबके लिए, लेकिन वही लोग उसको उसका असली फल प्राप्त करेंगे जिनके पास योग्यता है। से नहीं और भैया पढ़िए उसको।
दो घनिष्ठ मित्रों अर्थात ऋषिकेश तथा पुरकेश के मध्य वार्ता चल रही थी। मित्र के रूप में दोनों का पद समान था, किंतु इनमें से एक स्वेच्छा से दूसरे का शिष्य बन गया। कृष्ण हंस रहे थे क्योंकि उनका मित्र अब उनका शिष्य बन गया था। सबके स्वामी होने के कारण वे सदैव श्रेष्ठ पद पर रहते हैं, जो भी भगवान अपने पद के लिए सखा उतनी उम्र की करना स्वीकार करते हैं। जब उन्हें गुरु रूप में अंगीकार कर लिया गया तो उन्हें तुरंत गुरु की भूमिका निभाने के लिए शिष्य से गुरु की भांति गंभीरता की जैसा कि अपेक्षित है। ऐसा प्रतीत होता है कि गुरु तथा शिष्य की यह वार्ता दोनों सेनाओं की उपस्थिति में हुई, जिससे सारे लोग लाभान्वित हुए। अतः भगवद्गीता का समाज किसी एक व्यक्ति, समाज या जाति के लिए नहीं अपितु सबों के लिए है, और इसे सुनने के लिए शत्रु समान रूप से अधिकारी।
तम्बुवाच इसिदंतम इदम वचः, ये वाक्य बोला हुआ। तो अभी अगले श्लोक से हमारा दूसरा यहाँ पर विभाग शुरू होता है ना, सांख्य योग। तो आत्मा और शरीर के बीच में जो अंतर है उसको विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से, टिल 6:30 वी आर टेकिंग राइट। तो दोनों के बीच में जो अंतर है उसको भगवान बहुत ही विस्तार से वर्णन करने वाले हैं, उसको सांख्य दर्शन कहते हैं। तो या आत्मविद्या भी कहते हैं उनको उसको, या उसको ज्ञान भी कहते हैं। तो अभी तीन प्रकार के सांख्य दर्शन होते हैं। तो एक सांख्य दर्शन था वो नास्तिक कपिल नामक एक कपिल मुनि ने प्रचार किया था। तो उसका अर्थ होता है ये भौतिक जगत को, भौतिक जगत के तत्वों को वो अध्ययन करते हैं, 24 तत्व है भौतिक जगत के, उनको अध्ययन करते हैं और वो तत्व को अध्ययन करते हैं और लेकिन वो लोग इन भौतिक तत्वों के जो आधार है भगवान विष्णु उनको स्वीकार नहीं करते। तो इसको इसलिए उनको नास्तिक कपिल माना जाता है, उसको कपिल के उनके संख्या, वो एक सांख्य दर्शन है। दूसरा सांख्य दर्शन है जो भगवान कपिल, भगवान के अवतार जो कपिल मुनि थे, देवहूति के पुत्र बनकर आए थे, कश्यप क्या कौन है वो, खर्दम मुनि और देवहूति के पुत्र बनकर आए थे, तीसरे स्कंद में जिनका वर्णन आता है, वो भी उन्होंने भी सांख्य दर्शन को सिखाया। वो भी है कैसे भौतिक जगत 24 तत्वों से बना है लेकिन उनका आधार क्या है, भगवान विष्णु है और उनके भक्ति में लगना चाहिए, ऐसे उन्होंने सिखाया। वो एक सांख्य दर्शन है और ये भी एक सांख्य दर्शन है। तो जो भगवान बता रहे ये क्या है, ये शरीर और आत्मा के बीच में जो अंतर है उसको विश्लेषणात्मक रूप से विस्तार से वर्णन करना, उसको सांख्य दर्शन कहते हैं, सांख्य ज्ञान। तो ये ऐसे तीन है, तीनों अलग है ये, लेकिन एक दृष्टिकोण से, या तीनों अलग है ये, तीनों एक एक दृष्टिकोण से जो भगवान बता रहे हैं और कपिल मुनि बता रहे हैं वो उसका दोनों का लक्ष्य अंत में क्या हो जाता है, एक हो जाता है, इसके कारण वो दोनों से एक ही है लेकिन फिर भी इसमें अंतर है। और ये दर्शन है और हम लोग इसको आगे बढ़ने से पहले भागवत से हम लोग कुछ पढ़ेंगे इसके बारे में, विष्णुदेव क्या बोलते हैं, अभी भगवान जो आत्मविद्या देने वाले हैं उसके बारे में क्या बोलते हैं, हम लोग उसको देखेंगे। सपदि सकी वचो निशम्य मध्य, नो नो वो नहीं, वो हम लोगों ने परसों पढ़ा था, व्यवहित, ये पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 36वां श्लोक है, उस दिन हम लोग 35वां और 37वां श्लोक हम लोगों ने पढ़ा था, ये 36वां श्लोक है, पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 36वां श्लोक। व्यवहित व्यवहित प्रतनामुकम निरीक्ष स्वजनवदाद्विमुखस्य द्वेषबुद्ध्या बुद्ध्या कुमतिहरदात्मविद्ययाश्च क्षरनरतिः परमस्य तस्य मेस्तु। जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया, उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने रहे, ऐसे भीष्मदेव प्रार्थना कर रहे। सुना आप लोगों ने, जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा लग रहा था, ये अब तक हम लोगों ने जो भगवद्गीता में पढ़ा पहले अध्याय से आरंभ लेकर अभी तक उसका सार है। तो लग रहा था, तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट कर दिया, उनके चरण कमल सदैव मेरे आकर्षण के लक्ष्य बने,
तो विशेष करके यहाँ पर आत्म विद्या शब्द आता है ना इस श्लोक में, इसलिए हम यह श्लोक अभी उल्लेख कर रहे हैं, क्योंकि अभी भगवान आत्म विद्या को प्रदान करने के लिए आरंभ करने वाले है ना। तो तात्पर्य भी बहुत अच्छा है। तात्पर्य, राजाओं तथा सेनापतियों को लड़ने वाले सैनिकों के समक्ष खड़ा होना पड़ता है। वास्तविक युद्ध की प्रणाली यही है। जब राजा तथा सेनापति आज के तथाकथित राष्ट्रपति या रक्षा मंत्री जैसे नहीं होते थे, जब बेचारे सैनिक या भाड़े के सिपाही एक दूसरे से आमने सामने लड़ रहे होते तो राजा या सेनापति घर में बैठे नहीं रह सकते थे। यह आधुनिक प्रजातंत्र का विधान हो सकता है, लेकिन जब वास्तविक राजतंत्र था तो सम्राट ऐसे नहीं होते थे। जो योग्यता पर विचार किए बिना चुने जाने वाले कायरों जैसे हो, तो ये योग्यता बिना ऐसे चुनाव के द्वारा ऐसे कायर राजा बन जाते हैं आजकल। जैसा कि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में से स्पष्ट है, दोनों पक्ष के कार्यकारी प्रधान तथा द्रोण, भीष्म, अर्जुन तथा दुर्योधन सोए हुए नहीं थे। वे सभी ऐसे युद्ध में भाग ले रहे थे जो लोक आवास के स्थानों से कहीं दूर संपन्न होने जा रहा था। इसका अर्थ यह हुआ कि निर्दोष नागरिक प्रतिद्वंद्वी राजसी दलों के युद्ध के प्रभाव से बचे रहते थे। मतलब ऐसा नहीं कि किसी के ऊपर जाके सोते हुए लोगों के ऊपर, मासूम लोगों के ऊपर बॉम्ब डाल देना, ऐसा युद्ध नहीं होता था। ऐसे युद्ध में जो कुछ भी हो रहा होता उसे नागरिकों द्वारा देखे जाने की कोई आवश्यकता ना थी। उन्हें तो अपनी आय का चौथा भाग शासक को देना होता था, चाहे वे वह अर्जुन हो या दुर्योधन। कुरुक्षेत्र के युद्ध में दोनों दलों के सेना नायक आमने सामने खड़े थे। अर्जुन ने उन्हें अत्यंत करुणा से देखा तथा पछताने लगा कि राजलिप्सा के कारण वह अपने स्वजनों की को ही मार डालेगा। वह दुर्योधन द्वारा बनाए गए भयानक सैन्य व्यूह से रंच भर भी भयभीत नहीं था, लेकिन भगवान का दयालु भक्त होने के कारण यह स्वाभाविक था कि उसे संसारिक वस्तुओं से वैराग्य होता। अतः उसने निश्चित किया कि वह संसारिक वैभव के लिए युद्ध नहीं करेगा। लेकिन यह तो अल्प ज्ञान के कारण था, इसलिए कहा गया है कि उसकी बुद्धि कलुषित हो गई थी। उसकी बुद्धि को कभी भी कलुषित होने नहीं होना चाहिए था, क्योंकि वह भगवान का भक्त तथा सखा था। जैसे कि भगवद्गीता के चतुर्थ अध्याय से स्पष्ट है, निश्चित ही अर्जुन की बुद्धि कलुषित हो गई थी, अन्यथा देहात्म बुद्धि के द्वारा भौतिक बंधन में पड़े कलुषित बद्ध जीव के कल्याण के लिए भगवद्गीता का उपदेश देना का अवसर कैसे प्राप्त हुआ होता। भगवद्गीता संसार के बद्ध जीव ओम के उद्धार के लिए सुनाई गई है, जिससे शारीरिक, यहाँ पर देखिए, जिससे वे शारीरिक को मिथ्या ही आत्मा न मान बैठे और परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को पुनः स्थापित कर सके। दो उद्देश्य हमने चर्चा किया था ना। भगवान द्वारा आत्मविद्या का प्रवचन मुख्य रूप से ब्रह्मांड के सभी भागों के समस्त व्यक्तियों के लाभ के लिए हुआ था। ये अभी तक हमने जो भी चर्चा किया उसके सार रूप में प्रभुपाद यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग इसको चर्चा करेंगे। श्लोक क्रमांक 11, श्री भगवान उवाच अशोचानन्वशोचस्त्वां प्रज्ञावादांशभाससे नानुशोचन्ति पंडितः। श्री भगवान ने कहा, दूसरी बार श्री भगवान ने कहा, अभी आया, तुम पंडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए न ही मृत के लिए शोक करते हैं। यहाँ पर प्रॉपर श्री भगवान, तुम पांडित्यपूर्ण वचन कहते हुए उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं न तो जीवित के लिए न मृत के लिए शोक करते हैं।
इसका अर्थ है कि आप जो भी बोल रहे हैं वो बकवास है, और दूसरा है आप अपने आप को पंडित सोच रहे हो लेकिन क्या है अब मूर्ख हो, ऐसे दोनों चीज बता रहे भगवान यहाँ पर। तो क्यों क्यों ये सब चीज जो अर्जुन बता रहा था देहात्म बुद्धि में के स्तर पर ही बोल रहे थे, शारीरिक स्तर पर, मृत शरीर के स्तर पर वो सब अभी चर्चा कर रहे थे। तो ऐसे अर्जुन अभी पिछले श्लोक में भगवान हंस लिया, उन्होंने दो तीन श्लोक सातवें और आठवें श्लोक में अर्जुन भगवान को शरणागत आ गए और बताया मैं आपके शिष्य हूँ, और पिछले श्लोक में उसके कारण वो भगवान हंसे, वो मेरे मित्र प्रिय मित्र क्या बन गए अभी मेरा शरणागत शिष्य बन गया करके तुरंत ही अपने गुरु का जो क्या है स्तर है उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया और शिष्य को चस्टाइज डांट दिया उन्होंने, दैट आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर, तो उन्होंने डांट दिया। ये गुरु का स्थिति होता है, गुरु को अपने शिष्य को डांटना चाहिए। तो चाणक्य पंडित भी बोलते हैं ना शिष्य गुरु को क्या करना चाहिए, अपने शिष्य में गलती ढूंढ के उसको डांटते रहना चाहिए बस, तो वो गुरु का कर्तव्य है। तो और दो और चाणक्य भी ये भी बोलते हैं दो लोगों के लिए गुस्सा होने के लिए अधिकार है, एक गुरु और दूसरा क्या है पिता, दोनों को गुस्सा होने का अधिकार है। इसलिए भगवान ने क्या कर दिया अभी गुरु का अभी वो रोल अदा कर रहे हैं वो अभी, तो और तुरंत ही अर्जुन को डांट रहे हैं और अर्जुन को बोल रहे तुम मूर्ख हो बोल रहे। तो वास्तव में एक शिष्य को भगवान के सामने मूर्ख होना चाहिए, अपने आप को महान नहीं मानना चाहिए। ऐसे कथा बताया जाता है ना, वो क्या है वो कहानी बताया जाता है, दो विद्यार्थी आए गुरु के पास क्या सीखने के लिए, मृदंग सीखने के लिए आए। तो पहले वाला ने बताया, गुरु ने उनको उसका इंटरव्यू लिया, उसको पूछा कि क्या आता है वो मृदंग के बारे में, तो फिर वो विद्यार्थी ने बताया मुझे कुछ नहीं आता है, तो आपके लिए 200 महीने का आपको क्या फी देना पड़ेगा। फिर दूसरा को बुलाया और उनको पूछा आपको क्या आता है, वो ये ताल वो ताल दो ताल वो सब आता है, तो फिर उसने बताया उन्होंने गुरु ने बताया आपको 500 रुपये हर महीने देना पड़ेगा। फिर ये विद्यार्थी ने पूछा क्यों, मुझे बहुत सारा जानता हूँ मैं, आप मुझसे 500 मांग रहे हैं और उनसे 200 मांग रहे हैं, तो पहले जो भी आप जानते हैं उसको क्लीन करना पड़ेगा, फिर बाद में ये सब सिखाना पड़ेगा। ऐसे कभी कभी ऐसे होता है ना, हम लोग अपने आप को बहुत बुद्धिमान दिखाते हैं गुरु के सामने, तो वो नहीं चलने वाला, उसको ग्लास इज फुल एटीट्यूड बोलते हैं उसको। क्या है जब वो ग्लास क्या पानी या दूध से भरा है तो और उसमें डाल नहीं सकते आप, तो जो खाली रहता है उसमें बहुत कुछ डाल सकते हैं। तो इसलिए हमें गुरु के सामने क्लीन स्लेट जाना चाहिए, ऐसे खाली ग्लास के समान जाना चाहिए, या अपने आप को बहुत बुद्धिमान दिखाना नहीं चाहिए, अपने आप को मूर्ख दिखाना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु ने बताया ना, मेरे गुरु ने मुझे मूर्ख करके बता दिया है, इसलिए मुझे मैं वेदांत को अध्ययन करने के लिए योग्य नहीं हूँ, इसलिए मुझे उन्होंने क्या सिखाया, ये हरे कृष्ण महामंत्र को सिखाया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम राम हरे हरे, ऐसे उन्होंने सिखाया। तो ऐसे बोलते तो ऐसे एक गुरु के सामने मूर्ख होना चाहिए। वैसे तो भगवान अर्जुन मूर्ख के वो मूर्ख ही बन गए थे देहात्म बुद्धि के कारण, इसलिए अर्जुन भगवान उनको खंडन कर रहे हैं। और यहाँ पर बोलते हैं नान शोचन्ति पंडिता, पंडित लोग
जो जीवित है और जो मृत है उनके बारे में शोक नहीं करते हैं, क्योंकि उनको पता है आत्मा का कभी सुख दुख नहीं होता है या जन्म मृत्यु नहीं होता है, उसके बारे में उनको जानकारी रहता है। लोग है ना, कोई मर जाते हैं तो इतना रोते हैं, सिर्फ नाटक करते हैं लोग रोने का लोग नाटक करते हैं और दो तीन दिन के बाद सब कुछ चलता रहता है, है ना। सो ऐसा करते हैं, लेकिन कोई कोई ऐसा शोक कर सकते हैं। बहुत ही वैदिक संस्कृति में बहुत आसक्ति रहता था, पांडित लोग आसक्ति ऐसे इसलिए शोक करते थे, लेकिन पंडित लोग शोक नहीं करते क्योंकि उनको पता है आत्मा का कभी तो मृत्यु नहीं होता है, उसका जन्म नहीं होता है। गतासुम न गतासुम, जो चला गया या जो अभी है उनके बारे में वो लोग वो चले गए ऐसे बोलते हैं ना, हम लोग बोलते हैं ना ही पास्ट अवे या चले गए, गत संस्कृत भाषा में उसको गत कहते हैं। तो प्रभुपाद इसको एक एक तर्क देते थे आत्मा का अस्तित्व के बारे में, या जी या चेतना कैसे ये देह से परे है, ये देह से बाहर है, वो अलग है, चेतनशील जीवात्मा वो गथा, गथा मतलब वो चला गया फास्ट अवे। तो कौन चला गया, शरीर तो वहीं पर पड़ा है ना, कौन चला गया, वो है आत्मा है, ये तर्क है। गथा सुन न गथा सुन, अगथा मतलब जो है जीवित है, उनके लिए पंडित शोक नहीं करते। तो पंडित मतलब जो विद्वान आत्मा को ज्ञान को जानते हैं। किसी को पता है कहाँ पर पंडित के बारे में वर्णन हुआ है और परिभाषा दिया गया है? यहाँ पर एक परिभाषा दिया गया है पंडित का, क्या परिभाषा है यहाँ पर, वो जो गतासुन न गतासुन स न शोचंती पंडित। एक परिभाषा है कि वो जीवित है या जो चले गए हैं उनके बारे में शोक नहीं करते, वो एक परिभाषा है। दूसरा परिभाषा क्या है, कौन बताएंगे? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी सुनी चैव सुपाके च पंडिता समदर्शिनः, क्योंकि वो लोग भी आत्मा और परमात्मा को देखते हैं हृदय में, सभी जीवों को वो समान दृष्टिकोण से देखते हैं, आत्मा के दृष्टिकोण से देखते हैं, बाहर शरीर को देखते नहीं है वो पंडित कहते हैं उनको समदर्शिन। और दूसरा उसका शर्त, उसका अर्थ क्या है, जब उनके शरीर को जैसे तकलीफ पहुंचता है वो दूसरों के शरीर में भी तकलीफ होता है तो उनको वो महसूस होता है, इसलिए वो कभी हिंसा में नहीं लगाते आत्मा के स्तर पर आत्मा। और दूसरा परिभाषा किसी को पता है पंडित का, मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लोस्त्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः, वो भी एक पंडित का परिभाषा है। सभी स्त्रियों को या जो गृहस्थ होते हैं अपने पत्नी को छोड़कर सबको क्या करना चाहिए, माँ के समान देखना चाहिए, ऐसा ब्रह्मचारी मतलब सभी माताओं को माँ के समान देखना चाहिए। तो ये ब्रह्मचर्य का प्रशिक्षण है, माताजी इसीलिए बोलते हैं ना माताजी, वो गुजरात में बहन जी प्रचलित है, वो सबके लिए बेन बेन लगाते हैं, है ना, उनके सभी स्त्रियों के नाम के बाद में बेन लगाते हैं, और पुरुष के नाम के बाद भाई क्या नाम था आपका, महेश भाई तो वो वैदिक संस्कृति नहीं, वैदिक संस्कृति मतलब माता जी नॉट बहन जी, ये सभी नया शुरू कर दिया भारत में लोग, है ना। वो विवेकानंद भी यही प्रचार किया उसने, वो पाश्चात्य देश से वो लेकर आया, वो सिस्टर सिस्टर करके वो लोग बोलते हैं ना पाश्चात्य देश में, क्या सिस्टर निवेदिता ऐसा एक स्त्री को लेकर आया, उसका ही वो पूरा पाश्चात्य देश का प्रचार करने का उपलब्धि, क्या बोलते सक्सेस, व्हाट इज हिज सक्सेस, अचीवमेंट क्या बोलते हैं उसको, वो एक स्त्री को लेकर आया, वो सोचा वो स्त्री ये देश को उद्धार करने वाली थी
तो ये मातृवत परदारेश्वर ऐसे चाणक्य पंडित कह रहे हैं। कभी कभी इस्कॉन में भक्त लोग अपने पत्नी को भी माताजी बोलते हो वो नहीं होना चाहिए। परदारेश्वर मतलब दूसरों के पत्नी को, दूसरों के दूसरे माता को। वो सब नाम से वो ब्रह्म कुमारी मतलब भ्रमित कुमारी कोई शास्त्र का आधार नहीं कुछ। यहाँ पर हम लोग शास्त्र के आधार पर, चाणक्य पंडित ने ऐसे बताया, शास्त्र के आधार पर हम लोग चर्चा कर रहे। वो क्या अपने मन गणित दम से कुछ भी बना सकते हैं, है ना? वो मन गणित बना सकते हैं, उसका क्या फायदा होता है, उसका क्या यू नो वैल्यू क्या है, उसका मौल्य क्या है? तो बहुत सारे लोग कुछ बताएंगे, उसको क्या लेना देना है ना। शास्त्र क्या बताता है वो हमें सब, महाजन क्या बोलते हैं। मातृवत परधारेशु परद्रव्येशु लोस्त्रवत। तो दूसरों के जो क्या है संपत्ति है, धन है, उसको रास्ते में पड़े हुआ कूड़ादान के समान सोचना चाहिए हमें। तो कैसे होगा ना चेतना? ये आजकल लोग क्या सोचेंगे, किसी ने किसी तरह उसको ग्रैब करने के लिए तैयार रहते हैं, कैसे ना हा? तो ईशोपनिषद में भी ऐसे ईशावाशमिदम सर्वम यत्किंचा जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भूंजिता माग्रद खस्य स्विद्धनम। तो वहाँ पर वर्णन आता है सब कुछ भगवान ईश का है, भगवान का है। सो और जो हमें हमारा खोटा जो है उसको ही अपने दैव के व्यवस्था के अनुसार, अपने पूर्व किए हुए पुण्य के अनुसार जो भी हमें प्राप्त हुआ है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। दूसरों को तो हड़पने के लिए हमें कोशिश नहीं करना चाहिए, ऐसे बताया। तो ब्राह्मण को मतलब पंडित विद्वान को कैसे होना चाहिए, उसको ऐसा नहीं लगना चाहिए उसके पास है ऐसे मन में आ गया तो ब्राह्मण या विद्वान नहीं है। उसके पास ये सब चीज़ है, मेरे पास भी ऐसे होना चाहिए, ऐसे कोई सोचता है तो तुरंत ही वो ब्राह्मण का पद से गिर जाता है, वो सबका उसका विद्या नष्ट हो जाता है क्योंकि लोभ लोभ आ गया हृदय में। इसके पास ऐसा मोबाइल है कॉस्टली, मेरे पास भी ऐसे होना चाहिए ऐसे। इसके पास दो तीन है, मेरे पास भी और दो तीन होना चाहिए ऐसे, ऐसे नहीं। तो वो ब्राह्मण का लक्षण नहीं, दूसरों का चीज है मतलब वो। लेकिन भक्ति में हम लोगों को ऐसे देखना चाहिए, ये भगवान का वस्तु है, वो भगवान की सेवा में लगा देना चाहिए। तो भक्ति में उसको हम लोग ऐसे देखते नहीं, कूड़ादान के समान। सो परद्रव्येषु लोस्त्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु या पश्यति स पंडितः। सभी जीवों में आत्मा को देखते हैं, सभी जीव आत्मा है, ये शरीर नहीं है, उनको ये ज्ञान होता है। यही चीज भगवान यहाँ पर बताने वाले हैं ना, लेकिन उनको पंडित कहते हैं। लेकिन अर्जुन ये ज्ञान देहात्म बुद्धि में है और अपने आप को बड़ा बड़ा शास्त्रों से उल्लेख करके कुछ कुछ बोल रहा है, तो तुम मूर्ख हो बोलते, क्योंकि आत्म ज्ञान नहीं है तो शास्त्रों को उल्लेख करके क्या फायदा है। और दूसरे शब्दों में बोलेंगे तो सभी शास्त्र का सार क्या है, आत्मविद्या, आध्यात्म विद्या विद्या नाम, भगवान बाद में बताएंगे 10वें अध्याय में 32वें श्लोक में। सभी विद्याओं में 14 प्रकार के विद्या होते, उसमें क्या है आध्यात्म विद्या प्रमुख है, वो मैं हूं बोलते भगवान। वो विद्या नहीं है तो सभी जो अन्य विद्या है तो भी क्या फायदा है, वो कुछ फायदा नहीं। इसलिए भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम मूढ़मते नहीं नहीं संप्राप्ते सनिहिते काले दुक्रम नहीं 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 रक्षति रक्षति दुक्रम करने। ये सब अन्य विद्या क्या है, कुछ सहायता नहीं करने वाला, भगवान को भजन करो। तो ये पढ़िए उसको,
आप विद्वान की तरह बातें करते हो, किंतु तुम ये नहीं जानते कि जो विद्वान होता है अर्थात जो ये जानता है कि शरीर तथा आत्मा क्या है, वे किसी भी अवस्था में शरीर की के चाहे वे जीवित हो या मृत शोक नहीं करता। अगले अध्यायों से स्पष्ट हो जाएगा कि ज्ञान का पदार्थ तथा आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है।
तो यहाँ पर प्रभुपाद बोलते हैं कि अगले अध्यायों से यह स्पष्ट हो जाता है कि ज्ञान का अर्थ पदार्थ का आत्मा एवं इन दोनों के नियामक को जानना है। अगले अध्यायों में से कौन सा अध्याय बताइए? या 13वें अध्याय में बताएगा ज्ञान का वर्णन, वहां पर अर्जुन ने पूछा ना ज्ञान क्या है। तो इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते एतद्यो व्यतीतं प्राहु क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ञानं मतं मम। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो ज्ञानं यत्तज्ञानं मतं मम। तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञयो, एक क्षेत्र मतलब शरीर, और शरीर को जानने वाले मतलब दो क्षेत्रज्ञ योर, ये बहुवचन है, मतलब दो क्षेत्रज्ञ होते हैं, एक आत्मा दूसरा है परमात्मा जो सर्व क्षेत्रेषु भारत सभी क्षेत्रों में विद्यमान है। तो उन दोनों को, ये तीनों को जानना क्या है? ज्ञान है। इस तात्पर्य में भी प्रभुपाद ज्ञान का परिभाषा देते हैं और आगे भी देंगे अगले अध्याय अगले श्लोकों में भी इस श्लोक के तात्पर्य में। जब पढ़िए तो कहाँ पर वो ऐसे समझ रहे थे? धार्मिक राजनीति या समाज नीति की उपेक्षा धर्म के अधिक महत्व मिलना चाहिए, कहाँ पर ऐसे सोच रहे थे वो? 36वें श्लोक में पहले अध्याय का हम लोगों ने वो श्लोक भी उल्लेख किया ना, पहले यज्ञ वो कौन सा वशिष्ठ स्मृति और मनुस्मृति, फिर उसके बाद में यज्ञवल्क्य स्मृति। यज्ञवल्क्य स्मृति में बताया गया धर्मशास्त्र श्रेष्ठ है करके, उसके आधार पर वो वाद विवाद कर रहा था। ऐसे आतताइयों को हम लोग मार नहीं सकते हैं, लेकिन प्रभुपाद यहाँ पर बोल रहे हैं या भगवान ऐसे बोल रहे कि वो धर्मशास्त्र से भी परे क्या है? यह आत्मविद्या है, यह आध्यात्मिक विद्या उससे भी श्रेष्ठ है, वो तुम नहीं जानते इसीलिए तुम मूर्ख हो। बोल रहे आगे पढ़िए। तो पंडित कौन है, विद्वान कौन है, ज्ञान क्या है, ये सब चीज इसमें वर्णन किया है। तो यहीं पर रुकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम। आपका कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? जल्दी भागेंगे आप। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? जब हम लोग कहते हैं कि शैडो है, परछाई है, तो उसका मूल स्वरूप भी होना चाहिए ना, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? परछाई है तो है कि नहीं, होना चाहिए ना। तो वो कैसे, वो तर्क ठीक नहीं है कि ये क्षणिक है, इसका अर्थ है कि ये मिथ्या तो नहीं है, ये सत्य है। ऐसा नहीं कि ये रूप है ही नहीं, इसलिए कैसे निराकार हो सकते हैं भगवान?
और भौतिक जगत क्या है, उसका प्रतिबिंब है आध्यात्मिक जगत का। भौतिक जगत में जो भी है वो उसका मूल रूप वहाँ पर होना चाहिए। समझ में आ रहा है? सो गलती क्या है मायावादियों का, वो लोग क्या सोचते हैं, स्पिरिट इज नेगेशन ऑफ मैटर, उनका परिभाषा है स्पिरिट का अर्थ। बट प्रभुपाद कहते हैं स्पिरिट, या भगवान भगवद गीता में कहते हैं स्पिरिट इज नॉट नेगेशन ऑफ मैटर बट मैटर इज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिट। वो मूल रूप है इस जगत में, उसका प्रतिबिंब रूप बोलते हैं। उसका अर्थ क्या है, इसलिए ना वो प्रभुपाद बोले मैन इज मेड इन द इमेज ऑफ गॉड, बाइबल में भी ऐसे कहा गया, नॉट दैट इन अवर ऑन अवर इमेज वी हैव मेड। हमारा परिभाषा वो नहीं था कि हम लोगों के ऊपर हमारा रूप है इसलिए भगवान के रूप है। हम लोगों का परिभाषा क्या था, वो पूर्ण है और वो सभी का स्रोत है, इसके कारण रूप भी होना चाहिए उनके अंदर। समझ में आ रहा है? देयर इज डिफरेंस इन अवर डिफाइनिंग वे ऑफ डिफाइनिंग हाउ द मायावादीज आर डिफाइनिंग एंड हाउ वी आर डिफाइनिंग एब्सोल्यूट ट्रुथ। एक्चुअली दे आर डिफाइनिंग एब्सोल्यूट ट्रुथ एज नेगेशन ऑफ मैटर एक्चुअली, बट वी आर डिफाइनिंग एब्सोल्यूट ट्रुथ एज मैटर एज परवर्टेड रिफ्लेक्शन ऑफ द स्पिरिट। यू गॉट द आइडिया डिफरेंस? लेकिन ये सब बोलने का क्या आधार से बोल रहा है? आप कुछ भी बोल सकते हैं क्या, हम उसे स्वीकार करना चाहिए? उसका कुछ शास्त्र का आधार चाहिए ना, सिर्फ तर्क के ऊपर आप कुछ कंक्लूजन में नहीं आ सकते। तर्क का सीमा होता है, तर्क का सीमा होता है, वो उसका आकार कैसे बोल सकते हैं कि उसका आकार नहीं है करके। स्पुलिंग का आकार नहीं, सिर्फ स्पुलिंग इसलिए बताया गया क्योंकि हम लोग अंश है, भगवान विभु है। इसका अर्थ ये नहीं कि हमारा स्पुलिंग का आकार नहीं होता है, वो अग्नि का स्पुलिंग का भी आकार है ना, वास्तव में अग्नि का रूप होता है ना। भौतिक तत्व आप पढ़ेंगे तो, या भौतिक तत्वों का अध्ययन करेंगे तो रूप कहाँ से आता है, तो अग्नि में रूप होता है कि नहीं? इसलिए वो लोग वो कुछ कीड़े होते हैं ना, उस रूप को देखने के लिए वो अग्नि में प्रवेश होके मर जाते हैं, है ना। What is your logic? What is your knowledge? Nothing is there in that substance. Again,
point
means what? Point also has form. Which fellow told that point is not form? That stupid someone defined in mathematics that it is a formless. What is that? Formless, dimensionless. Point is dimensionless. तुम्हें dimension को measure, तुम उसको माप नहीं सकते हो, इसलिए बोल रहे हो उसका dimensionless. पॉइंट बोलते हो। वो क्या डायमेंशन नहीं, उसका सबका डायमेंशन होता है। आत्मा का भी डायमेंशन बता रहा है भगवान, 1/10,000 पार्ट ऑफ द टिप ऑफ द। ऑल दिस स्टूपिड थिंग्स आर टॉट इन द स्कूल एक्चुअली। पॉइंट इज अ डायमेंशनल, व्हाट इज दैट, हाउ दे डिफाइन यूनिट, डायमेंशनल यूनिट इट इज दे बोलते। सो डायमेंशनल यूनिट, everything has dimension, everything has form actually.
और ये धर्म पालन नहीं किया तो वो समझ सकते कि वो क्षत्रिय धर्म था, क्षत्रिय धर्म नहीं पालन किया उसने।
या देहात्म बुद्धि के कारण क्या हो जाता है, भौतिक स्नेह बढ़ जाता है। भौतिक स्नेह के कारण वो अपना जो कर्तव्य है वो नहीं कर पाएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, नपुंसकता बोलते हैं, है ना।
Thank you.
जाओगे नहीं वहाँ चले जाते, लेक्चर के बीच में इस तरह से लेक्चर के बीच में अगर ज़्यादा पढ़ रहा हूँ
या, लेकिन यहाँ पर हम लोग भौतिक नियम नहीं बोल रहे, हम लोग ये क्या है, भागवतम को अपराध है वो एक, पहले ये वो सब करके आ जाना चाहिए। वैसे उसमें भी डीटी वर्शिप में भी विग्रह सेवा में भी वैसे बताया गया ना, बीच में ऐसे नहीं जाना चाहिए करके, क्योंकि भगवान के ऊपर जो ध्यान है वो बंद हो जाता है, तो ये सब प्रशिक्षण होना चाहिए सब। विग्रह का सेवा करते वक्त बीच में ऐसे नहीं जाना चाहिए, एक नंबर के लिए वगैरह, आरती करते समय आप मैं एक नंबर जाऊंगा करके व्हाट इज दैट नॉनसेंस। तो वैसे ही क्लास में जब बैठते हैं ऐसे नहीं करना चाहिए। और सो लास्ट टू आर ट्रांसेंडेंटल राइट, ऑल अदर आर सो मंडे इन दे आर, दैट मीन्स दे आर 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 ओ दे आर क्योंकि वो दूसरा है, पहला दूसरा जो है वो भी दूसरों से हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी वो क्या है, जैसे आजकल स्कूल और कॉलेज में दूसरों से सुन के सीखते हैं, लेकिन वो आरोह पंथ है क्योंकि वो भी प्रत्यक्ष के ऊपर आधारित ज्ञान है, इसलिए वो आरोह पंथ है। हालांकि दे आर हियरिंग फ्रॉम अदर्स, सो इसलिए जब हम लोग अवरोह पंथ का वर्णन करते हैं, हियरिंग फ्रॉम अथॉरिटीज, द नॉलेज विच डिसेंड्स थ्रू अथॉरिटीज, दैट इज अवरोह पंथ, दैट इज ओनली लास्ट टू अधोक्षज एंड अप्राकृत, ओनली दोज टू नॉलेज आर ट्रांसेंडेंटल। सो मच इज देयर माय गॉड, yeah, these people, they will be like that. Sometimes he analyzed it like that. Bhaktivinoda Thakur, he is like spiritual scientist. He will analyze things very systematically, very organized, very systematically. Jiva Goswami also. Aur kuch? Hare Krishna.
Read.